अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मूसा है और मैंने कुवैत से ज्वाइन किया है।
अलैकुम सलाम मूसा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, सलामत रहो।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل يغشاها والسماء وما والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والرسل وسيد المقاومين والمجاهدين والصامدين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله وحجة الله وناصر المظلومين والمستضعفين مولانا ومقتدانا الإمام الحاضر المهدي الموجود الموعود أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الدائم على ظالميه على رسول الله وعلى رسول الله وعلى أمة رسول الله من المستكبرين والجابرين والكافرين والظالمين، لعنة أبد العابدين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَلَوْ وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سورة نساء کی آیت نمبر 64 ہے. मौजू हमारा तकरीबन आखिरी ज़माने से ही रिलेटेड है, जो इससे पहले हम जिसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं, और उसके अंदर जो है एक मुस्तकिल हैसियत के साथ एक और जो है जिसको आप कह सकते हैं कि ज़िमनी मौजू, जिसमें यह है कि जब इमाम अजल्लाह ताला फर्जहु शरीफ का ज़हूर होगा तो इमाम को लोग क्या पहचानेंगे, तो ये जो पहचानने वाले लोग होंगे इनकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, और पहचानने से मुराद जाहिर है कि सिर्फ शिनाख्त करना तो नहीं है, जानना तो नहीं है, बल्कि ये कि साथ देना है, साथ खड़े रहना है, और मुखालिफत में भी क्या लोग आ सकते हैं, अगर मुखालिफत करेंगे तो किस किस्म के लोग हो सकते हैं। इस मौजू की ये एक सीरीज़ की शक्ल में हो सकती हैं, जिसके कई आगे मजीद एपिसोड हो सकते हैं, तो इसकी एक जर्नल पिक्चर आज हम दे देंगे कुरान मजीद की रोशनी में, और बहुत ज़्यादा हम आयात कुरानी को आज एड्रेस नहीं करेंगे, बल्कि उस आयात कुरानी में मौजूद जो निचोड़ है उसको हम पेश करेंगे, और फिर अगली किसी भी नशस्त में हम मुख्तलिफ आयात को भी लेकर उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। एक फार्मूला फलसफे के अंदर, जो इलाही फलसफा है जिसको हिकमत मुतालिया कहा भी कहा जाता है, उसके अंदर एक फार्मूला भी है और हदीस भी रिवायत भी है, और मेरे ख्याल में मौला अली अलैहि सलाम के फरमान से भी मिलता जुलता है कि चीज़ों को अगर पहचानना हो तो एक पहचानने का तरीका यह है कि उसकी जो अपोजिट साइड में चीज़ें हैं उसको पहचाना जाए। तो अरफुल अशिया भी अल्तादिहा, कह रहे हैं कि सफेदी वाइटनेस उस वक्त पता चलता है जब उसके मुकाबले में कोई और कलर हो, जैसे ब्लैक कलर हो तो वो ज्यादा हाईलाइट होता है, या बिल्कुल वाइट बोर्ड के अंदर अगर एक ब्लैक डॉट हो या एक पॉइंट नुक्ता लगा हुआ हो तो वो ज्यादा नुमाया होकर नजर आता है, क्योंकि वो उसका अपोजिट है, तो चीजें उसकी अपोजिशन से पहचानी जाती हैं। तो बहस का जो उसूल और तरीकेकार होगा हमारे इस मौजू के ऊपर, वो इससे यानी उसकी बेस के अंदर ये चीजें होंगी, कुरानी बहस होगी और हदीस के हवाले से बहस होगी। आज की नशिस्त में हम 6 पॉइंट जिक्र करने वाले हैं इंशाअल्लाह, और ये 6 पॉइंट असल में फाउंडेशन बनाएंगे हमारी गुफ्तगू की, जो आने वाले सेशंस होंगे उसके ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट समझें कि 98% हम इन 6 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही घूम रहे होंगे। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, और पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कुरान मजीद ने जब खुदा के नुमाइंदे भेजे गए अल्लाह की तरफ से, तो उन नुमाइंदों को लेकर मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ लोगों, ग्रोहों, उम्मतों और शहर, करिए, देहात, टाउन्स के लोगों के जो रवैये हैं कि किस तरह बिहेव किया उन उम्मतों ने उन पैगंबरों के साथ, उन अल्लाह के नुमाइंदों के साथ, उसको कुरान मजीद ने कोट किया है, और इसके ऊपर जो है जाहिर है कि मुफस्सरीन गुफ्तगू करते हैं, और मुस्तकिल मौजू की हैसियत से भी किताबें मौजूद हैं, लिखी गई हैं, ऐसी किताबें भी हैं जो आम जनरल पब्लिक के लिए हैं, एकेडमिक बाउंड्रीज से बाहर के लिए भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस करके डेटा मौजूद नहीं है, बल्कि बिखरे शक्ल में मिल सकता है आपको, खासकर जो हमारे मास्टर सोर्सेज हैं उसके अंदर, और इसमें सबसे पहल जिसने किया है और सबसे गहरी अमीक जिसने गुफ्तगू की है आलम तशय्यो के अंदर, वो अजीम मुफक्किर, दानश्वर, फलसफी, फकीह, मुश्तहिद और साहिब फजल व करामत, बहुत बड़े इनकलाबी रहनुमा और रहबर, और जो जिनके बारे में कोई अल्फाज कम पड़ जाते हैं कि खुदाए मुताल ने क्या उनको मकाम मंजिलत दिया था कि बालिग होने से पहले वो इश्तिहाद के मरहले में पहुंचे थे उनके उस्ताद आयतुल्ला खोई की गवाही के मुताबिक, और आयतुल्ला उस जमाने के जो अल्लामा अस्करी हैं उनकी जबानी ये बात कोट हो चुकी है, जो कि अल्लामा अस्करी की शख्सियत पहचानी हुई है। मेरी मुराद शहीद आयतुल्लाह अल उजमा मुफक्किर अजीम मुफस्सिर आयतुल्लाह बाकर मोहम्मद बाकर सदर शहीद हैं, उन्होंने ज्यादा गहरे अंदाज में गुफ्तगू की है। फिर उसके बाद जिन शख्सियात ने गुफ्तगू की है उनमें नुमाया तौर पर जो शख्सियत हैं, अलबत्त बहुत ज्यादा फोकसिंग गुफ्तगू नहीं है, वो और एस्पेक्ट और जो है मौजू को लेकर बात कर रहे थे, वो है शहीद मुर्तजा मुताहरी। और इसके बाद भी शख्सियात आपको बहुत सारी मिलेंगी जिन्होंने गुफ्तगू की है। मौजूदा रहबर और हमारे लीडर और उम्मत के रहनुमा हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनाई, क्योंकि एक दानिश्वर और मुफक्किर थे इस इनकलाब से पहले, और शहीद मुतहरी हमेशा इनसे मशवरा करते थे फिक्री दुनिया के अंदर, और एक बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के तवाना स्पीकर के तौर पर पहचाने जाते थे। तो उनकी जो उस वक्त की स्पीचेज हैं और बाद में जो स्पीचेज हैं उनके अंदर भी इस मौजू को एड्रेस किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये हनूज तिशना मौजू है कम से कम उर्दू जबान के अंदर। तो चलते हैं पहले पॉइंट में। पॉइंट नंबर वन ये है कि कुरान मजीद गुरोहों और उम्मतों के रवियों की बात करता है नबियों की दावत के मुकाबले में। तो जाहिर है कि मेन तो दो कैटेगरियां बयान हो रही हैं। पहली कैटेगरी ये है कि जब नबी आए उन्होंने खुदा की दावत पेश की तो कुछ ने कबूल कर लिया और कुछ ने उसको कबूल नहीं किया, लेकिन जिन्होंने कबूल किया उनके भी मुख्तलिफ किस्म के बिहेव्स और रवैये थे। जिन्होंने एक्सेप्ट किया दावतों को, समझा, कबूल कर लिया, उनमें से एक कैटेगरी ऐसी थी जिन्होंने बड़े मजबूत तरीके से उस दावत को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसके लिए जान जोखम लगा दिया, अपनी पूरी सर धड़ की बाजी लगा दी उसके ऊपर, और उसको अब उनके लिए वो मकसद हयात बन गया, उनके लिए वो सब कुछ बन गया, उसके मुताबिक वो जिए, उसके मुताबिक वो मरे, उसके लिए वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना, सबसे बड़ा गोल बन गया। ये है यानी जिसको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ तरीकों से कोट किया है, बल्कि बाज जगहों में कह भी रहा है कुरान की भाई खुजूह बिलकुवा, पूरी कुव्वत से थामो इसको, उदखुलूहु फिस्सिल्म काफ्फा, पूरी तरह एंट्री करो, ये क्या तरीका है, आधा तीतर आधा बटेर कर रहे हो दिन के मामले में, ये काम मत करो। कुरान मजीद ने मुख्तलिफ इस तरह के वर्ड्स के जरिए से हम मोटिवेट करने की कोशिश की है, हम जो मिस्टेक हो रही है उसकी तरफ को एड्रेस किया। तो एक ग्रोह तो वो है जिन्होंने कबूल किया था दावत अंबिया को, बड़ी मजबूती से थाम लिया, लेकिन कुछ और लोग भी थे जो एक्सेप्ट तो कर चुके थे लेकिन फिक्री इखलाकी नफ्सियाती समाजी मुख्तलिफ किस्म की कमजोरियां और खामियां उन लोगों में पाई जाती थी, जिसको कुरान मजीद ने और रिवायात और अहादीस ने कहा है कि तुम लोगों को क्या हुआ है, तुम्हारा अमल और अकीदा आपस में मैच ही नहीं करते, तुम लोग नजरिया कुछ और रखते हो, अकीदा कुछ और रखते हो, अमल उसके अगेंस्ट कर रहे हो, मकाम अमल में तुम लोग सुस्ती के शिकार हो, मकाम अमल में तुम लोग कहें कहें एतराज करने लग जाते हो, ये ऐसे क्यों है, कहें तुम बहाने करने लग जाते हो, ये ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये हुआ, मैं मसरूफ था, मैं मेरे साथ ये हुआ है, मैं तो बिल्कुल जी बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ जी, मैं फैमिली के इश्यूज खड़े हो गए हैं, मेरे पास तो ये खड़ा हो गया, मेरे कौम के अंदर ये मसाइल आ गए हैं, मेरी मईशत तबाह हो गई है, मैं तो बिल्कुल भी दीन के लिए टाइम नहीं निकाल सकता हूँ और दीन के फलां अमल पर प्रैक्टिस करना भी मेरे लिए मुश्किल बन चुका है। इसको कुरान ने कहा ये देखें जो आप कर रहे हो ना, ये जो रवैया आपका बिहेव है पैगाम खुदा के मुकाबले में और खुदा के नुमाइंदे के मुकाबले में, ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। दूसरी तरफ तुम इखलाकी तौर पर नफ्स अम्मारा के भी शिकार हो गए और तुम्हारी मिसाल अब ऐसी बन गई है कि ईमान मुझे खींचे है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे कितने पीछे है, कलीसा मेरे आगे। तो कह रहे कुछ इस तरह की सिचुएशन में तुम लोग गए हो, बावजूद उसके कि तुमने पैगाम को एक्सेप्ट कर लिया है नजरियाती और थियोरिटिकली तौर पर माशाल्लाह से तुम समझ गए कि ये सच है ये हक है, लेकिन अब हक को कबूल करने के बाद थियोरिटिकली तौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में हक के रास्ते पर चलते हुए पैगाम खुदा के रास्ते पर खुदा के नुमाइंदे के कहे हुए को फॉलो करते हुए तुम्हारे लिए परेशानी आ रही है, बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हो। मुख्तलिफ आयात के अंदर एड्रेस किया है, बतौर तबर्रुक व तयम्मुम दो आयतें कोट करता हूँ। फरमाया कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसहुम फरीकन कज्जबू व फरीकन यक्तुलून। एक तो ये इन्हीं गुरोहों के हवाले से कहा कि देखो जब भी हमने कोई नबी उनके पास भेजा है ना, जब भी आया है कोई, तो उनमें से एक ग्रुप तो ऐसा खड़ा हो गया सोसाइटी में, कज्जबू, इनकार कर दिया कि तुम खुदा के नुमाइंदे नहीं हो। दूसरे ने कहा सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि थोड़े एक्सट्रीम हो गए वो लोग, उन्होंने कहा भाई हम तो मारेंगे तुम्हें, यक्तुलून कत्ल करेंगे। ये सूरह मायदा की 70 आयत है 70। और फिर फरमाया सूरह यूसुफ में 109 में वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही अलैहिम मिन अहलिल कुरा अफलम यसीरू फिल अर्ध फयंदुरू कैफ काना आक़िबतुल्लदीना मिन क़ब्लिहिम देखो यार, हमने तो हर एरिया में नबी भेजे थे। हमने जब भी भेजा है वहां पर उन्होंने हमारी वही के जरिए से पैगाम पहुंचाया। और तो तुम में क्या हुआ है कि आज कह रहे हो ये खुदा का नुमाइंदा कहाँ से आया? तुम क्या जमीन में देख नहीं रहे हो कि कैसे तुमसे पहले जिन उम्मतों ने खुदा के नुमाइंदों को लेकर बुरे रवैये रखे, साथ नहीं दिया, अच्छा रवैया नहीं अपनाया, उनका क्या अंजाम हुआ है? इस तरह की और भी बहुत सारी आयात हैं जो कि इस वक्त इस नशस्त में हम बहुत ज्यादा नहीं जाने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर वन में हमने दो कैटेगरीज को सुना, समझा और मालूम हुआ कि कबूल करने वाले थे, रिफ्यूज करने वाले थे। कबूल करने वालों में कुछ ने पूरा कबूल किया, अच्छी तरह अपने लिए मकसद हयात बनाया, जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया उनका, तमाम मकासिद सेकेंडरी हो गए, ये जो है फर्स्ट और मकसद के तौर पर सामने आया। कुछ लोग ऐसे हो गए कबूल करने के बावजूद सुस्ती के शिकार हो गए, नफ्स अम्मारा के शिकार हो गए और वो बेचारे डामाडोल बनते चले गए। अच्छा, क्या वजूहात कुरान बयान करता है ऐसे सिचुएशन वाले लोगों के बारे में, इस तरह की कैटेगरी के लोगों के बारे में क्या बताता है? मुख्तलिफ किस्म की बातें कुरान मजीद ने कोट किया है जो उनके हवाले से हैं, जिनमें कुछ चीजें मरकजी हैं, बाकी चीजें उसके ऊपर इन्हिसार करती हैं। बुनियादी वजह कुरान बयान करता है कि पैगाम खुदा की मारिफत हासिल नहीं की थी पूरी तरीके से, दीन शिनासी जिसको हम आज एक टर्म यूज करते हैं, दीन शिनासी नहीं थे, यानी वो दीन को अपना चुके थे लेकिन दीन को पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पा सके थे, फिक्री एतबार से थ्योरिटिकली तौर पर समझे नहीं थे, दीन शिनास नहीं थे दीन के तमाम हवाले से। दूसरा बड़ा इशू उनके सामने तहजीब नफ्स का फुकदान था, बस कमजोर दीन शिनासी एक मसला था और तहजीब नफ्स का मुमकिन है कि नजरियात, अकाइद, अकली बहसें, मंतिकी बहसें, इन चीजों में कोई आदमी बहुत मजबूत और स्ट्रांग हो, लेकिन वही आदमी जब तहजीब नफ्स का मामला आता है तो बहुत ही कमजोर वाकई हो जाए, बड़ा बुजदिल वाकई हो जाए, जब कुर्बानी देनी पड़ रही हो बुजदिली दिखाए, वहां पर कमजोरी साबित हो जाए उसकी, जब लालच का मरहला आ जाए, जब उसके सामने ये आए कि जनाब देखें आप हैं मुसलमान, आप इस नबी पर ईमान ला चुके हैं, अब आपके सामने दो चॉइस खड़े हो गए हैं, एक तरफ आपकी दुनिया खड़ी हो रही है, दूसरी तरफ आपका दीन खड़ा हो रहा है, अब आप देखें आप किस चीज को चॉइस करते हैं। ये इम्तिहानात मुख्तलिफ लोगों में आए हैं और करबला तो बहुत बड़ी इसकी सबसे बड़ा मैदान था जहां पर ये चीजें वाजे हो गई हैं। तो कमजोर दीन शिनासी एक खतरनाक चीज है। कमजोर दीन शिनासी के क्या मुख्तलिफ उसकी पहचान और उसके मुख्तलिफ डायमेंशन बन सकते हैं, पहलू निकल सकते हैं, बहुत सारे निकल सकते हैं। कमजोर दीन शिनासी इसलिए कि उनके यहाँ दीनी मसाइल से ज्यादा सोशल और समाजी मसाइल या कल्चरल इश्यूज या जो एक हिस्टोरिकल कल्चरल इश्यूज हैं जिसको हम रसूमात भी कहते हैं, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंस अख्तियार कर गई है, क्योंकि लोगों के अंदर अच्छे बुरे की पहचान या बड़े और छोटे की पहचान या इज्जत और बेइज्जती की इंटरप्रिटेशन उस कल्चर की ऐनक से की गई है, तो वो मजबूर हैं, उसकी वजह से वो दीन के मुकाबले में अगर वो रस्म या वो कल्चर या वो सकाफत या वो तहजीब आ जाती है तो यहाँ दीन को साइड पे करते हैं, उसको थाम लेते हैं, पकड़ते हैं। कुरान ने जिसको कोट किया कि जैसे मुशरिकीन कहते हैं कि ए रसूल देखें बाकी सब ठीक है लेकिन जो जो तुम बाज चीजें कह रहे हो ना, हम बाप दादाओं के जमाने से ऐसा करते आए हैं, आप मेहरबानी करें इसमें हमें आप छूट दे दें, या कह रहे थे कि ये किस किस्म का आदमी है जो हम पिछली जनरेशन टू जनरेशन हम करते आ रहे हैं, कहते वो सब छोड़ दो गलत चीज है, वो कह रहे हैं एकदम से वो गलत कैसे हो गया, एकदम से सारी चीजें गलत हो गई हैं और खुदा के नुमाइंदे की बात के मुकाबले में खड़े, इन्ना वजद ना आबाओ ना आल उम्मा, कह रहे हैं कि तो बाप दादा करते आए, हमारी कई जनरेशन ये प्रैक्टिसिंग करते आई और आज आप आ गए हैं और आप हमें बता रहे हैं जी ये सब गलत, छोड़ दो, कह रहे हैं कि ये रच बस गई है हमारी सोसाइटी में, हम इसके साथ पले बड़े हैं, हमने इसी तरह सीखा था, हमने यही जाना था, अब आप कहते हैं कि इसको ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल मरहला है। कमजोर दीन शिनासी का नतीजा यह है कि दीन के मुकाबले में और नजरियात और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस पैदा कर लेती हैं उस इंसान, उस दीन को एक्सेप्ट करने वाले उस खुदा के नुमाइंदे को मानने वाले इंसान के लिए। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ तहजीब नफ्स का फुकदान है, तो ये मसला आते हैं। एक वाकया कोट करते हैं जो कि शाम का वाकया है, जब इमाम जैनुल आबिदीन व सैयदुल साजिदीन सलवातुल्लाहि वसलामहु अलैहिम व अला असहाबिहिम व आवानिहिम कैद थे वहां पर। जाहिर है कि उस जमाने के कैद, मैं पहले कई बार कोट कर चुका हूँ, कि इस तरह नहीं होते थे कि जेल जैसे आज के जमाने के जेल हैं, जहां पर कैदी बस एक बाउंड्री के अंदर है। और उस जमाने में कैदियों को शॉर्ट टाइम के लिए इजाजत होती थी कि वो बाहर निकलें और अपने खाने पीने का इंतजाम भी कर लें। एक प्राइवेट किस्म की जेल्स भी होती थी, तो बाज़ औक़ात कैदियों को थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए परमिशन होती थी कि वो जरा गेट से बाहर आ जाते थे, रोजी रोटी तलाश करते थे। वो जो कैदी आया था मौलाए कायनात और सईदाए कायनात, जब रोजा रखा था घर के अंदर, तो वो जो इसमें असीर आया, कैदी आया, तो वो इसी तरह का एक कैदी था जो कि उस वक्त वहां पर आया था। उस वक्त इमाम जैनुल आबिदीन अलैहि सलाम जिंदान के दरवाजे से बाहर नजदीक में कोई ऊंची सी चबूतरा टाइप की चीज थी शायद, वहां पर खड़े थे, तशरीफ रख रहे थे। एक शख्स है मिनहाल बिन उमर ताई, उनका पूरा नाम है, यानी उमर ताई का बेटा मिनहाल। वो मिनहाल जो है कहता है कि मैं वहां से गुजरा तो मैंने देखा कि इमाम अली मकाम की पिंडलियां नजर आ रही थी, जो अरबी एक ड्रेस होता है दशदाशा, वो कहते हैं खुश्क लकड़ी की तरह हो चुकी थी। मैंने इमाम से आकर पूछा कि फर्जंद रसूल कैसे हाल हैं आपके, कैफा असबहता, कैसे हाल हैं आपके। तो इमाम आली मकाम ने जवाब दिया, फरमाया उस शख्स का क्या हाल होगा जो यजीद का कैदी हो, माओं बहनों के सरों पर चादरें ना हो, बच्चों पर रहम ना हो रहा हो, और हम अहले बैत रसूल की मिसाल इस वक्त बनी इसराइल की कौम की तरह है, जहां फिरौन जो है मर्दों को कत्ल करने के बाद औरतों को अपने पास रख लेते थे। अरब और कुरैश जिस पर फख्र करते थे, जिस नबी पर इतराते हैं और फख्र करते हैं, हम उसी की आल हैं, हम उसी के अहले बैत हैं, और देखो कि हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। हम में से कुछ को कत्ल किया गया है और जो बच गए हैं उनको अब इन्होंने कैदी बना लिया है, हमारे मेंबर पर कब्जा कर लिया है, हमारे हक को गसब कर लिया है। और अजीब बात यह है कि मेंबर से हमारे खिलाफ बुरा भला कहा जा रहा है, भला तो नहीं, बुरा ही कहा जा रहा है। और फिर इमाम ने एक जुमला इस्तेमाल किया, असल में इस जुमले की खातिर मुझे ये सारी स्टोरी सुनाया, वगैरह आमतौर पे मैं अवॉइड करता हूँ कि स्टोरीज के जरिए से आप को बेस ना बनाएं, मगर ये कि उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ मौजूद हो और वो स्टोरी भी अपनी जगह पर सच्चाई और तारीखी हकीकत रखती हो। इमाम ने फरमाया يعظمون له أعوار منبره وتحت أرجلهم أولاده, ये उम्मत रसूल के मेंबर की लकड़ी का तो एहतराम करते हैं, लेकिन उसी मेंबर के नीचे जिस औलाद को इन्होंने कैदी बना के रखा हुआ है उसका कोई एहतराम नहीं करते और उसे रोंद रहे होते हैं और उस पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं। वफ़ख़िरकुम अन्नकुम सहब लहू तबा हकम बनू यतबाउनकुम, यानी वो चाहते हैं कि उनके ऑर्डर को वो आल और वो जो है उनकी औलाद कबूल करें, वो हुक्मरान बने उस औलाद के ऊपर जो कि साहेब ततहीर हैं, साहेब इल्म लदुन्नी हैं, साहेब वही और साहेब दीन और शरीयत हैं, मुफस्सिरीन दीन भी हैं, मुहाफिजीन दीन भी हैं। उनको कहते हैं भाई तुम हमारे ऑर्डर को फॉलो करो। रसूल के मेंबर की लकड़ी का एहतराम वो कर रहे हैं, आले रसूल का एहतराम वो नहीं करते हैं। बस ये एक द सेम टाइम इमाम जहां कई पहलू बयान कर रहे हैं उस उम्मत का, उन लोगों का, कि देखें रसूल से रिलेटेड चीजें, मुंह ये मुबारक हो, नालेने मुबारक हो, अबाए मुबारक हो, अमामाए मुबारक हो, ठीक है ये सब कुछ वाजिबुल एहतराम, क्या हमारी आंखों के कदमों, रसूल के तो कदमों की जो खाक है वो हमारी आंखों का सुरमा है और फख्र और इज्जत और ताजीम की बात है, लेकिन देखें तो जरा कि हम रसूल के कदमों की खाक का एहतराम तो करें लेकिन आले रसूल और उस पैगाम का एहतराम न करें जो रसूल का पैगाम है, जिसकी खातिर खुद रसूल और पूरी आले रसूल कुर्बान तो दीन शिनासी कभी इस तरह बन जाती है कि आदमी जो है इमाम के नाम से मंसूब किसी चीज का तो हद से ज्यादा एहतराम का कायल होता है, लेकिन इमाम के दी हुई किसी पैगाम का, किसी तालीम का, किसी चीज का वो बिल्कुल ही निगलेक्ट और वायलेट करता है, नजरअंदाज कर देता है। यानी मेंबर की लकड़ी मोहतरम, उसके नीचे तशरीफ फरमा आले रसूल कैदी शक्ल में उसका कोई एहतराम नहीं है, उनकी कोई, ये क्या है? ये उसी गलत तरीके से दीन शिनासी का नतीजा है। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा लंबा करने का मकसद नहीं है आज। जिन लोगों ने ठुकरा दिया अल्लाह के नुमाइंदे के पैगाम को, कबूल नहीं किया, दावत कबूल नहीं की, उनके अंदर भी कैटेगरीज हैं। उनमें से एक कैटेगरी है जिन्होंने थोड़ी सी डिप्लोमेसी, आज की मॉडर्न इस्तेलाह में, अलबत्ता मैं उस मनफी डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं, वो तरीका अपनाया जिसको कुरान ने कहा मुनाफिकाना तरीका, यानी अपने मफादात के हुसूल के लिए कबूल किया, इसको कुरान ने कहा दे आर मुनाफिकीन। ये मुनाफिकीन की कटरी में डालो, कैटेगरी में डालो, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है दावत को अल्लाह के नुमाइंदे की, लेकिन एक्सेप्ट करने का जो मेन हदफ है वो दिलो जान से उसको सच और हक समझकर कबूल करना नहीं है, बल्कि वो अपने मफादात के हुसूल के लिए टूल्स के तौर पर दीन और खुदा के नुमाइंदे को कबूल कर रहे हैं, क्योंकि खुदा के नुमाइंदे के जरिए से हाजात पूरी करनी है, अपने मकासिद हासिल करने हैं, जाती मकासिद, दुनियावी मकासिद पूरे कराने के लिए खुदा के नुमाइंदे के साथ देना है। लेकिन अगर खुदा का नुमाइंदा इन्हीं इस ग्रोह को कोई ऐसा हुक्म दे दे जिसमें इनके मफादात खतरे में पड़ रहे हों, तो ये कभी भी साथ नहीं देंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे, इनके रवैये बदलेंगे, ये बल्कि बहाने तलाश करेंगे, बल्कि खुदा के नुमाइंदे के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। दूसरी कैटेगरी जिन्होंने मुखालिफत की, उन्होंने खुलम खुला कबूल नहीं किया और बिल्कुल भी कबूल नहीं किया। अब जिन्होंने मजीद कबूल नहीं किया, इनके और कैटेगरीज हो सकते हैं, जिन्होंने खुलम ओपनली कहा नहीं हम तो एक मानते ही नहीं इस बात को, हम आपके अपोजिशन में हैं, हम आपके खिलाफ हैं, हम आपके अगेंस्ट हैं, इनकी कैटेगरीज भी हो सकती हैं जो हम आगे बात करें। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है, वो है जिसको कुरान ने कहा मुस्तज़ाफीन की कैटेगरी, कमजोर किए गए लोगों की कैटेगरी, यानी वो बेचारे खुद से यानी कमजोर हुए हैं या उनको कमजोर किया गया है। ये क्योंकि आप लोग इन चीजों से वाकिफ हैं तो मैं बहुत ज्यादा इसमें वक्त आपका नहीं लिए बगैर इसके अंदर एक बारीक पॉइंट है उस पे डायरेक्ट चला जाऊंगा ताकि आपका ज्यादा वक्त ना ले। ये जहन में रखें कि ये जो कमजोर किए गए लोग हैं ये वही लोग हैं जिनकी नजात के लिए इमाम ने तशरीफ लाना है कुरान की आयात के मुताबिक, और खुदा वादा करता है इन कमजोर किए गए लोगों से कि देखो हमने जमीन का वारिस आपको बनाना है और आपके हाथ में सारा कुछ देना है, एक वक्त ऐसा आएगा और ये आएगा बेशक, अपना टाइम लेगा लेकिन आना जरूर है, ये एक अटल बात है। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना स्तुज़िफ़ू फिल अर्द व नजअलहुम अइमतन व नजअलहुम वारिसीन व इला आखिरिही, इस तरह की और भी आयात हैं। लेकिन कुछ लोग हैं अपने हाथों से खुद को कमजोर कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनकी बात यकीनन नहीं कर रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी के अंदर इसी कैटेगरी में जिनको टाइटल दिया गया है अहादीस के अंदर आवान उद्दालमा के नाम से, आवान यानी औन से है, औन यानी मददगार, जालमा जालिम, जालिमीन के मददगार हैं। ये जो जालिमीन के मददगार हैं ये बड़ी खतरनाक कैटेगरी है, ये देखने में बड़े सीधे सादे ढीले डाढ़े बड़े सिविलाइज मिजाज के, बहुत ही मुमकिन है क्वालिफाइड एजुकेशन रखने वाले और मुख्तलिफ टाइटल्स और अनामीन्स के जरिए से अपनी अखलाकियात को पेश करने वाले, लेकिन बड़े डेंजर लोग हैं। इंशाल्लाह हम अगली नशिस्तों में आवान उज़्ज़लमा कौन लोग हैं, कुरान किस तरह के लोगों को पेश करता है, इसकी इनकी आइडेंटिटी क्या है, कैसे पहचाने इनको कि इनके खतरों से बचे रहें हम, कहें इनकी लपेट में ना आ जाएं, जो जालिमीन के मददगार होते हैं, हमेशा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दूसरे अल्फाज में आपके जहन को करीब करने के लिए कह रहा हूं, ये असल में ऐसे हाई लेवल के प्रोफेशनल्स होते हैं अपने काम के अंदर कि ये जालिमीन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो जालिमीन इनकी दी हुई सर्विसेज के जरिए से उनके जुल्म में इजाफा हो जाता है और वो मजलूमीन के ऊपर सितम ज्यादा से ज्यादा ढाते हैं, जैसे कि इस वक्त आप मुशाहिदा कर रहे हैं गज़ज़तुल इज़्ज़ा में, यानी इज्जत वकार की अलामत बनने वाले, इस्तकामत की अलामत बनने वाले इस 360 किलोमीटर या 45 स्क्वायर किलोमीटर के इस एरिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल अगली नशिस्तों में हम आवान उस जलामा के ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे जिन्होंने कबूल नहीं किया, लिहाजा उनमें भी जिन्होंने खुलम खुला ओपनली कहा जी हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते आपकी बात को, हम तो आपकी अपोजिशन में गए हैं, वही आखिरी उनमें भी दो कैटेगरी हैं, मजीद दो कैटेगरीज कुरान बयान करता है। बाज ने सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकरा दिया, लेकिन कोई सख्त रिएक्ट नहीं किया, उनका रिएक्शन कोई ऐसा जो है वायलेशन वाला नहीं था कि कहे जी हमने एक्सेप्ट तो नहीं किया है लेकिन अब हम जंग भी करेंगे तुम्हारे साथ, लड़ेंगे भी मारेंगे भी तुम्हारे इसके तुम्हारे खिलाफ हम खड़े होने वाले हैं, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा देखो हम इससे एग्री नहीं है जी, जैसे आज भी कहते ना वी आर नॉट एग्री, बस अपनी राह पकड़ ली, अपनी लाइफ और अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मुखालिफिन में जरूर हैं, लातालोग रहे जिसको कहा जाता ना लातालोग रहने वाले, अपने काम से काम रखो, जैसे उर्दू में एक मुहावरा है जिसका मिसयूज होता है, अपने काम से काम रखने वाले, कह रहे हम हैं तो उस पार्टी में नहीं, हम तो अल्लाह के नुमाइंदे के साथ नहीं है, लेकिन हमने कोई लड़ना बढ़ना भी नहीं है, हम अपने काम से यार वी वॉन्ट ए कम्फर्ट लाइफ, हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, हमें क्या मुखालिफ लड़ने की जरूरत क्या है, हम मान नहीं रहे बस ठीक हो गया ना। लेकिन एक और कैटेगरी है जिन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं हर किस्म के टकराव तसादुम और क्लैश के लिए नबियों और अल्लाह के नुमाइंदों के लिए के साथ तैयार हो गए, उन्होंने कहा नहीं हम सिर्फ मानेंगे नहीं, हमारी जंग शुरू हो गई अब तुम्हारे साथ, वो तुम खुदा का नुमाइंदा बनकर आए हो, हम जंग करेंगे तुम्हारे साथ, चाहे कोल्ड वार हो या जो है बिल्कुल ही हॉट वार और गर्मा गर्म जंग हो। अब मसला यह है कि मजीद इसके अंदर भी कैटेगरीज आ सकती हैं जो हमारी फिक के अंदर जिनके ऊपर बहस किया जाता है, कभी ये ग्रोह की शक्ल में हो सकते हैं, यानी साठी सारी कैटेगरीज की बात कर रहा हूं, सिर्फ ये लास्ट कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, इनके मुख्तलिफ अहकाम हमारी फिक में हमारे मुज्तहिदीन जब दर्स खारिज दे रहे होते हैं उस फिका के चैप्टर के ऊपर जो फिका सोशल और पॉलिटिकल फिका कहलाती है या जो डिफेंस की फिका कहलाती है, तो उसमें दिफाई फिका कहलाती है या जो है दीन के वो बचाने वाली फिका कहलाती, इस तरह की जब मसाइल आते हैं तो कुछ इसके कैटेगरीज के ऊपर मजीद गुफ्तगू होती है, क्योंकि बुरे और जालिम लोगों के अंदर भी कुछ कैटेगरीज पाई जाती हैं, मुखालिफ के दरमियान भी कुछ कैटेगरीज पाई जाती हैं जिनमें से कुछ के साथ एक हद तक जिया जा सकता है, उनके साथ दुनिया में कम से कम कुछ हद तक आदमी चल सकता है, लेकिन ये जो लास्ट कैटेगरी मैंने बयान की जो सर्द और गर्म जंग में आने वाले हैं इनके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि इनको कुरान ने कोट किया है मुस्तकबिरीन हैं, ये मगरूर लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जुल्म और सितम ढाने वाले हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल अदल और इंसाफ के खिलाफ करते हैं, जो कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जिस वक्त आप जो है मशरिक वुस्ता के अंदर या मगरबी एशिया के अंदर आप देख रहे हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं बलाखरा ये 100 से अबो बन जाती हैं, जाहिर है कि इनमें से हर एक के ऊपर तो हमने बहस करके आपकी समक खराशी नहीं करनी है, ये काम हम मौलवियों का है कि हम उसको उन तमाम 100 कैटेगरीज में से तैयार करके डिशेस बना के आपके फिक्री टेबल के ऊपर डाइनिंग टेबल के ऊपर हम सजाएं ताकि आप आराम से कांटा छुरी पकड़ के इजीली खा सकें, इसीलिए जो है जो हमारे उलमाए कराम हैं उनका इतना बड़ा मकाम और मंजिलत अता किया है खुदा ने कि उनके साथ बैठने को भी इबादत करार दिया है और उनके उनके कहा कि टूटा हुआ कलम भी अगर कोई किसी दीनी तालिब इल्म या आलिम दीन की खदमत के तौर पर देता है तो कहा कि वो पुल सरात में उसके लिए एक सवारी बन सकता है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो इतनी अरगरेजी करते हैं, इतनी बारीकियां खंगालते हैं, उनकी उम्रें इसके ऊपर रिसर्च पे होती हैं, और फिर आखिर में हमें एक हमारी फिक्री टेबल के, डाइनिंग टेबल के ऊपर सजाकर ये बातें रख देते हैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में, कि हम आराम से जैसे हलवा खा रहा है आदमी इस तरह डाइजेस्ट कर लेता है। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। हमने अभी तक जर्नली खुदा के नुमाइंदों के हवाले से उम्मतों के रवैये और उनकी किस्में और कैटेगरीज के हवाले से हमने गुफ्तगू की। पॉइंट नंबर 4 में हम जाते हैं जरा नबुवत के बाद जो सिलसिला चला खुदा के नुमाइंदों का, जो इमामत और विलायत का तसलसल और सिलसिला है, उसको लेकर उम्मतों का रवैया कैसा रहा, जो कि क्योंकि एक बहुत बड़ा अरसा है और डायरेक्टली हमसे रिलेटेड है एज ए उम्मत पैगंबर आखिरुज़्ज़मान, हमसे बराह रास्त टच करता है। फिर वो जो एंड ऑफ द टाइम की हमारी सीरीज है उससे रिलेटेड असर जहूर में हमने जाना है, और असर गईबत में हम हैं। असर जहूर किसी भी वक्त हो सकता है, तो असर जहूर में हमारे लिए खुद खतरात मौजूद हैं। हमारा रवैया कैसा होगा, हम किस कैटेगरी में चले जाएंगे, क्या वो अच्छी कैटेगरी होगी, बुरी होगी, दरमियानी होगी, क्वालिटी वाइज किस लेवल पे हम खड़े होंगे। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी क्वालिटी वाइज हमें बस मिनिमम मिल जाए ठीक है, हमें कुछ आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुरान कहता नहीं, आपका मकाम और मंजिलत और अजमत ये है कि आप मिनिमम पे इक्तफा ना करें, आप मैक्सिमम की तरफ कोशिश करें। हमारी तो ये कोशिश होती है, और बीने एक दीनी तालिबे इल्म के हमारी भी कोशिश ये होती है, खुद अपनी नफ्स के लिए भी और हमारे लोगों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, हम दीन की वो चीजें ज्यादा इंसिस्ट करके ज्यादा जोर दे के बताएं जो मैक्सिमम देती हों। तो इसके लिए हम चलते हैं, बेहतरीन चीज जो मैंने आज के इस नशिस्त के लिए सेलेक्ट किया है वो दुआए नुतबा है। दुआए नुतबा आप लोग जानते हैं कि बराह रास्त इमाम जमाना से इस्तगासा और फरियाद और गिरिया और एक तरह से इश्क व मोहब्बत व मारिफत से रिलेटेड है, किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। इसके कुछ अयाम दिए गए हैं, स्पेशली मॉर्निंग ऑफ जुमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ कम्युनिटीज में ये मॉर्निंग ऑफ जुमा पढ़ा जाता है। जो जुमे के दिन नहीं पढ़ सकते वो संडे की मॉर्निंग पढ़ लेते हैं, या जो है सम टाइम इवनिंग पढ़ते हैं, नहीं तो 15 शाबान को जरूर पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। दुआए नुतबा में मजहब के यानी जो दुश्मन है या खुदा के नुमाइंदों के जो दुश्मन है उसको 3 ग्रोहों में तकसीम किया गया है, और ये भी कहा है कि दुश्मनाने नुमाइंदगाने इलाही ने खुदा के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ क्या रवैया अपनाया। तो इसमें भी कहते हैं कि 3 जोग्राफिकल एरियाज में दरबदर कर दिया, जलावतन कर दिया, हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। यानी मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मरकजियत है, जो सेंटर है, यहाँ यूरोप में एक वर्ड यूज होता है इंग्लिश जबान का, जो दीनी इमाम बारगाह या मस्जिद या दीनी एक्टिविटी की जो जगह होती है, क्योंकि हर जगह मस्जिद ऑफिशियल जो मस्जिद है फिकी वो नहीं होती, तो कहते हैं जी सेंटर गए थे, सेंटर में आए थे, सेंटर जा रहे हैं। बहुत बहुत खूबसूरत लफ्ज है ये मरकजियत। तो जो खुदा के नुमाइंदे की मरकजियत असल में वो पैदा होना ज्योग्राफिकल मरकजियत को डैमेज करने की उनकी कोशिश रही, और कोई मरकजियत बनने नहीं दिया, अगरचे उनकी कोशिश अपनी जगह, खुदा का नुमाइंदा का जहां जाता है वो मरकज ही बन जाता है, वो हकीकत अपनी जगह मौजूद, लेकिन दुश्मनों ने ये इस्तगासा हो रहा है कि ऐ खुदा दुश्मनों ने तेरे नुमाइंदों को किसी एक जगह मरकजियत और हेडक्वार्टर बनाकर कि वो पूरी दुनिया के लिए पैगाम उस हेडक्वार्टर से फैल जाए और वो एक मजबूत पॉइंट बन जाए, जैसे कि आज हमारे पास हौज़े अलमिया कुम है, ईरान है, आज हमारे पास हौज़े अलमिया नजफ है, इराक है, और इसी तरह और भी मुख्तलिफ जगह इंशाल्लाह बन रही हैं, लेकिन ये 2 बड़े हमारे मरकज हैं। अगर इन मरकज को कुछ नुकसान हुआ तो यकीनन न सिर्फ आलम तशय्यो बल्कि पूरे मुसलमान उम्मत के लिए बड़े खतरात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 मरकज मुस्लिम उम्मा के पेकर में बकौले हमारे सैयद और खुदा उनकी हिफाजत करे, जिनकी तकरीर कुछ अगले 1-2 घंटों में आने वाली है, इन हसास अवकात में उन्होंने फरमाया था कि हम अहले तशी उम्मत मुस्लिमा के जिस्म और बॉडी के अंदर अंजन की हैसियत रखते हैं। तो ये अंजन की हैसियत जो अहले तशी रखते हैं वो उनके इन दो मरकजों और यहाँ मौजूद हमारी मरजियत जो कि मरकजियत का नुक्ता है आसरे गईबत में उसकी वजह से है। तो आइमा की जो मरकजियत थी उसे डेवलप होने नहीं देना चाहते थे। और 250 साल तकरीबन 250 साल का ये अरसा है, इस पूरे पीरियड के अंदर यही कोशिशें दुश्मनों ने की और उस मरकजियत की मुखालफत की। जो मुखालफत करने वाली कैटेगरीज हैं वो ऑलमोस्ट इसी तरह की हैं, उनमें मुमकिन है कि उनके बिहेवियर और एटीट्यूड और उनका जो रवैया है उसमें वक्त के हिसाब से चेंजिंग्स आई हों। तो चलते हैं हम दुआए नुतबा के कुछ कोटेशंस में लेकर आया हूं, सेलेक्ट करके कुछ हिस्से को उसका तर्जुमा पढ़ते हैं। अब तर्जुमा किसी और ने किया है, मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की है क्योंकि तर्जुमा बहुत ज्यादा यानी उर्दू उसके एतबार से जुमला बंदी आम फहम नहीं थी, अदबी एतबार से तो ठीक थी, तो मैंने कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ज्यादा फोकस नहीं कर सका वक्त की कमी की वजह से। तो इंशाल्लाह कि आप लोग समझ जाएंगे। अब दुआए नुतबा के अंदर यूं मुखातब हो रहे हैं कि उन्होंने एक ग्रोह जैसे अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन और सादात बनिल हसन के दूसरे अइम्मा को कत्ल कर दिया। यानी ये साथ साथ मैं अर्ज कर दूं कि हम साथ साथ थोड़ी बहुत तशरीह भी दे रहे हैं ताकि वो जुमला जो दुआ का है वो जरा क्लियर वाजे अल्फाज में आ जाए। कुछ को कैदी बना लिया और उनको शहर शहर ले गए, दूसरे ग्रोह को उनके वतन से बेवतन कर दिया, और यहां तक कि हजरत अली अलैहिस्सलाम नजफ में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में दफन, इमाम मूसा काजिम और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम काजमेन ने, इमाम रजा अलैहिस्सलाम को अरब टेरिटरी से ही बाहर निकालकर खुरासान में जाकर रहना पड़ा और वहीं पर मदफून हुए, जबकि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सामर्रा में दफन हो गए, और उनकी औलादें दुश्मनों के खौफ से पूरी दुनिया में हिजरत करने पर मजबूर हो गईं, यहां तक कि ऐसा वक्त था कि उनके पीछे लोग लगे हुए थे। अब ये हिस्सा और हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट जो दुआए उसका नुतबा का बराह रास्त तर्जुमा है विदाउट तशरीह के। अब ये सिर्फ तर्जुमा है, शुरू का जो पार्ट था वो तो मैंने थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन डाल के एक समरीज आपको दे दी। और अली आपके बाद रहनुमा थे, गुमराही से वो हिदायत दिलाने वाले और अंधेरे से उजाले में लाने वाले, और अल्लाह की मजबूत रस्सी और उसका सीधा रास्ता थे। न तो साहेबान कराबत में रिश्तेदारों में आपसे कोई बढ़कर था, न ही दीन में मौला अली अलैहिस्सलाम से बढ़कर न कोई पहले था, न ही कोई आप किसी भी फजीलत और मनकबत के एतबार से कोई आपकी मंजिलत व मकाम तक पहुंच सका। आप रसूल खुदा की तरह थे और अली ही थे जो कुरान मजीद की तावील की खातिर लड़े और अल्लाह की राह में कभी किसी मुजम्मत करने वाले की मुजम्मत की परवाह नहीं की। आजकल हमारे यहाँ थोड़ा सा लोग क्रिटिसाइज करें, मुजम्मत करें तो आदमी पीछे हो जाता है, सीधे रास्ते को छोड़ देता है और लोग मुजम्मत कर रहे हैं। ये फरमाते मौला अली की सबसे बड़ी सिफत ये थी कि मुजम्मत करने वालों, लो मत लाइम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मुजम्मत करने वाले से वो घबराते नहीं थे। और इसी राह में आपने अरब के सरदारों को हलाक कर डाला, यानी कुफर के जो बड़े बड़े इस्तकबार के जो बड़े बड़े सरदार थे तागूत के, उनके बहादुरों को कत्ल किया, यानी जिनको वो समझते थे कि ये हमारे बहादुर हैं और बड़े सूरमार हैं, उनके भेड़ियों से लड़े खूनखार जो आज भी हैं, जिसकी वजह से आपके खिलाफ उनके दिलों में बद्र व हुनैन व खैबर व खैबर का कीना भर गया। चिनांची अरब आपकी दुश्मनी पर इकट्ठे हुए और आपके खिलाफ जंग व मुखालिफत का सिलसिला शुरू किया, हत्ता कि जंग करनी पड़ी आपको नाकिसीन से, यानी नाकिसीन यानी अहद शिकन जो तलहा और जुबैर और उनके साथी थे, और जाबिरों और सितमगरों को और दीन से बाहर जाने वालों के साथ जंग करनी पड़ी, यानी मारिकीन जो कि नहरवान में खवारिज वगैरह हैं। और जब आपने अपना वक्त पूरा कर लिया तो बदबख्त तरीन शख्स ने आपको कत्ल कर दिया। चिनांची रसूलुल्लाह के फरमान की इताअत तो रह गई, यानी रसूल के फरमान की इताअत अल्लाह के नुमाइंदे ने करवानी थी, वो बात तो यहाँ रह गई क्योंकि मौला अली को शहीद कर दिया। जो आपने ये के बाद दीगरे आने वाले रहनुमाओं के बारे में जारी किया था कि मौला अली के बाद इमाम हसन होंगे और तमाम जो है 12 इमामों के बारे में आपने जो हुक्म दिया था कि इताअत करो, वो बात यहीं पे रह गई। और उम्मत ने आपकी दुश्मनी और अदावत पर हठधर्मी दिखाई, आपकी कतई रहमी की, आपकी औलाद को खाना व काशाना छोड़ने पर मजबूर करने के लिए मुत्तफिक हो गई, मुत्तहिद हो गई। यानी बाज इत्तफाक और बाज इत्तहाद ऐसे होते हैं जब बातिल के लिए और गलत के लिए हो तो सही नहीं है। यहाँ लोग इकट्ठे हो गए, उम्मत इकट्ठी हो गई, मुत्तहिद हो गई, किस बात के लिए कि भाई रसूल की कतई रहमी करें, यानी जो उनकी औलाद हैं और आल हैं उनके खिलाफ कटे हो जाएंगे, उनको दरबदर करेंगे, क्योंकि ये हमारे मफादात के खिलाफ है। बस मफादात को बचाने के लिए आले रसूल के कत्ल के लिए तैयार हो गए, सिवाय उनके हक की रियायत करने की खातिर मुख्तलिफ, यानी मुख्तलिफ जो है मौके अख्तियार करने वाले, जो कि बहुत थोड़े से लोग थे, ये जो थोड़े बहुत ही लोग थे, बाकी सब आपके खिलाफ हो गए। बस आपकी औलाद में से कुछ लोग कत्ल हुए और कुछ को असीर किया गया, कुछ को वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया, और कजा व तकदीर इस तरह उन पर जारी हुई जिसमें अज्र व सवाब की उम्मीद की जाती है। यकीनन जमीन अल्लाह की है, वो उन पर तसल्लुत अता करता है। ठीक है, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, कत्ल किया, कैदी बनाया, वतन छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन दूसरी तरफ तकदीर इलाही भी है जो कि साथ चल रही है। अपने बंधु में से जिसे चाहता है और आखिरत की बेहतरी परहेजगारों ही का हक है या हिस्सा है, और पाक है हमारे परवरदिगार, बेशक हमारे परवरदिगार का वादा पूरा होकर रहता है, और अल्लाह हरगिज अपने वादे के खिलाफ न करेगा, और यकीनन वो इज्जत वाला और बड़ा हिकमत वाला। ये दुआए नुतबा के कुछ हिस्से थे। इससे हमारी समझ में आया कि आले रसूल के साथ, जो कि अल्लाह के नुमाइंदे थे 12 इमाम, उनके साथ क्या रवैये अख्तियार किए गए। उनको एक जगह पे बैठने नहीं दिया, जलावतन किया, कैदी बना लिया, कत्ल कर दिया, उनकी मुखालिफत कर ली, उनके हवाले से प्रोपगंडे करते रहे, बातें होती रहीं, वगैरह वगैरह। इसके पीछे मोटिव क्या है, वही दो बड़े मसले हैं। दीन की अदम शिनासी, पूरी तरह दीन को एक्सेप्ट ना करना, दीन की अदम शिनासी, अपने मफादात दीन के मुकाबले में आए तो मफादात की तरजीह, उसको बचाने के लिए एक्सट्रीम लेवल तक जाने के लिए तैयार, तेजी बनफ्स का फुकदान। आखिरी पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 6 है, और असल हमारी जो रूह है, बहस है, उसमें एंट्री का ये गेट भी है, ये पॉइंट। तो क्या, एक सवाल से ये पॉइंट शुरू करना जा रहे, तो क्या इमाम जमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की मुखालिफत में भी इसी किस्म के गिरोह होंगे जब इमाम जहूर करेंगे, जैसे कुरान ने गुज़श्ता नबियों के हवाले से कोट किया, जिसके ऊपर हमने एक शॉर्ट फॉर्म, जिसका हमने बयान किया, एक समरी दी आपको, दुआए नुतबा और दीगर दुआओं और तारीख और रिवायात के अंदर जो आइमा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, क्या इसी तरह के गिरोह होंगे। एक हदीस कोट करता हूं और यह बहस यहाँ पे सिमट जाएगी। इमाम जमाना के भी मुखालिफत करने वाले गुरु होंगे। हदीस है छठे इमाम से फरमाया, लो यालमुन नासु मा सना अल कायम इदा खरजा लहब अक्सरहुम अल्ला यरौ मिम्मा यक्तुल मिन अन्नास। अब जरा दिल थाम लीजिएगा, नाजुक मिजाज या शीशा मिजाज लोगों के लिए इस तरह की हदीसें बड़ी गरां गुजरती हैं। तो थोड़ी सी मैं कैसी हदीस ला रहा हूं, आमतौर पे ऐसे मिजाज लोगों की जरा ख्याल हम रखते हैं, लेकिन इस वक्त हम उस स्टेज पर नहीं हैं, पब्लिक स्पीच हम नहीं कर रहे, मोटिवेशन स्पीच नहीं हो रही है, हम गए हैं एक एकेडमिक बहस के अंदर, यहाँ पर ये चीजें रियायत नहीं होंगी। फरमाया कि जब इमाम का जहूर होगा और लोग जान लेंगे कि इमाम कायम अपने जहूर के बाद जो कुछ कर रहे होंगे, ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, वो क्या होगा, मिम्मा यक्तुलु मिनन्नास, बहुत सारे लोग इमाम के हाथों मारे जाएंगे। अम्मा अन्नहु ला यब्दा इल्ला बिकुरैशिन फला याखुदु मिन्हा इल्ला सैफ वला योतीहा इल्ला सैफ। क्योंकि जितने मुस्तकबिरीन गुरोह होंगे, जितने भी सर्द और गर्म जंग के हामी गुरोह होंगे, जाहिर है कि वो इमाम के हाथों मारे जाएंगे, जंग होगी, जंग का नतीजा होगा कि मारे जाएंगे। कुछ और हदीसें हैं इस मारे जाने की कैफियत को थोड़ा सा डीपली पिक्चराइज करके हमें दिया है, तो मैं उनको कोट नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें बाज़ औक़ात कहा गया कि अगर तुम देखो कि कूफे की गलियां या जो है मक्का मदीने की गलियां, यानी इतना खून वहां बह रहा है कि घोड़ों के टखनों तक आ रहा है, तो जो है परेशान मत हो जाना वगैरह वगैरह, यानी एग्जाम्पल है कि अच्छी खासी जंग होगी। लेकिन इसके नतीजे में होगा क्या, जो लोग बगैर मारिफत और समझ बूझ के वी वांट पीस टाइप के स्लोगन्स के पीछे अपना एक सॉफ्ट चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ वन फेस दिखाना चाहते हैं, वन साइड, हकीकत तो होती नहीं, वन साइड दिखाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा खतरा है ये। फरमाया हत्ता यकूलु कसीरु मिनन्नास, यहां तक कि बहुत सारे लोग इन चीजों को, इन मनाजिर को देखने के बाद कहेंगे, लैसा हाजा मिन आलि मुहम्मद, ये जो जमाने के इमाम बनकर जहूर कर गया है, ये इसका ताल्लुक आले मोहम्मद से नहीं है। लौकान मिन आले मोहम्मद, फिर दलील भी देते हैं, भाई आपने कैसे जज किया कि आले मोहम्मद का नहीं है, खानदान असमत से ताल्लुक नहीं रखता, अल्लाह का नुमाइंदा नहीं है, ये जमाने का इमाम नहीं है, वलीउल्लाह फिल अर्ज नहीं है, आपने कैसे गेस कर लिया एकदम से, फिर अपनी तरफ से दलील भी दे रहे हैं, अनालाइज भी कर रहे हैं। लौकान मिन आले मोहम्मद लराहिमा, अगर ये आले मोहम्मद से होता ना तो ये थोड़ी रहम कर चुका होता। किन के ऊपर रहम, कातिलीन के साथ रहम, हजारों लोगों को मारने वालों के साथ रहम। कुरान मजीद में जो किसास और दियात की आयतें हैं उनमें यही पॉइंट ज्यादा हाईलाइट किया खुदा ने कि खबरदार नरम दिली मत दिखाना, ये कातिल है, इसने हजारों लोगों को कत्लाम किया है, हजारों घर उजाड़ दिए हैं, तो अब उस कातिल को पकड़ोगे तो रहम करूंगा, किस बात के लिए रहम, यहाँ पे आप हुदूदुल्लाह को जारी करेंगे, फिरौन के रहम हो सकता है, यजीद पे रहम हो सकता है, हुरमला पे रहम हो सकता है, शिमर पे रहम हो सकता है, वो जो उसने, हाँ जुल्म उसके ऊपर नहीं होगा लेकिन जो उन्होंने किए हैं उसकी सजा तो भुगतेंगे ना, ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो कहेंगे ये आले मोहम्मद का नुमाइंदा नहीं है, खानदान इसमत और तहारत से ताल्लुक नहीं रखता है, क्योंकि अगर होता तो थोड़ी रहम दिली दिखाता, हत्ता तागुतों के ऊपर भी, जालिमीन के हवाले से भी, जालिम के ऊपर एक्स्ट्रा जुल्म नहीं होगा, वो ठीक इंसाफ होगा या नहीं होगा, इंसाफ और अदालत और जस्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इमाम तो जस्टिस कर रहे होंगे, लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है और इंशाल्लाह अहादीस हैं जिसकी तरफ हम जाएंगे, और यहाँ पर ये सेशन खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह अगली किसी फुर्सत में हम इसको मजीद खोलेंगे और मजीद मुख्तलिफ कैटेगरीज के ऊपर गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह ताला। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑर्गेनाइजर समेत आप तमाम मोमिन व मोमिनात दुनिया भर से, दाएं बाएं जहां से भी आपने तशरीफ लाया है, परवरदिगार आलम से दस बदुआ है कि परवरदिगारा हमें इमाम जमाना के मानने वाले और इमाम की मारिफत के साथ उन पर जान निछावर करने वालों में से शुमार फरमा। परवरदिगारा हमें किसी भी मरहले में किसी भी अमले मासूम के सामने सुई के नोक से भी और बाल से भी जो है बारीक तर जो है कोई खदशा, कोई ख्याल, कोई मनफी नेगेटिव, कोई सोच, ईमानी एतबार से, फिक्री एतबार से, अमली एतबार से परवरदिगारा हमसे दूर फरमा, और हमें मुती महज इमाम बनने और इताअत खालिस इमाम में रहने की तौफीक इनायत फरमा। असर गैबत में असर जहूर के लिए हमारी जो फराइज और जिम्मेदारियां हैं उसे जितना मुमकिन है अदा करने की हमें तौफीक इनायत फरमा। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी, जिनके जिनका सवाल है वो हैंड रेस करिए और प्लीज सिटी भी बता दीजिए। जवाब मत
अस्सलाम वालेकुम किमला।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला।
जवाद नकवी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ।
बिस्मिल्लाह।
एक तो मैं खुदा का शुक्र गुजार हूँ कि आपको जमाने के बाद कभी कभी मिलने, मतलब कि सुनने का मौका मिलता है, और जो ये जानते हुए कि आपकी जो तहकीकात हैं उसमें मतलब है कि जो नैरेटिव है वो एक थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और उसको समझने की मौका भी मिलता है। खूबसूरत एक बात की है आपने आखिर में
और जो निफाज शरीयत के लिए मतलब है कि एक मैं कुछ दिन पहले शायद सूरह नूर में मतलब ये बात पढ़ा था, कहीं औरतों पे हद जारी करने में उन्होंने हुक्म है खुदा है कि इसमें कहे जाना नरमी ना बरतना, बल्कि मतलब वो क्याम की वो क्या कहते हैं कि इस्तकामत की बात की, कि इस्तकामत के साथ जो है उसको जारी करो वरना मतलब कमजोर हो जाओगे, कोई इस मफहूम की कोई आयत है को
जी
वो
जी
इस चीज को मतलब है कि एक लार्ज स्केल पे ये खुसूसन जो कॉन्टेक्स्ट आजकल चल रहा है इसमें अगर सख्त मौकफ इख्तियार कर लिया, या हम सख्त के बजाय ये कहें कि एक एक ऐसा मौकफ जो हक की मतलब तरफदारी का हो और बातिल को बराह रास्त मतलब है कि बुरा भला कहने वाला या मतलब कि उसकी नफरीन करने वाला हो, तो उसमें कोई मुश्किल है या नहीं है, मतलब कि उसको इख्तियार किया जा सकता है या उसको बगैर किसी कबाहत के इख्तियार करने में कोई मुश्किल है?
नहीं, देखें जो अहकाम शरिया हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अहकाम जो शरिया हैं उसमें जब तक इमाम का जहूर नहीं अमसर गैबत में है तो वो हम पाबंद हैं मुश्तहिद के फतवे के हिसाब से, क्योंकि अहकाम शरिया कुरान मजीद में मुख्तलिफ आयात के अंदर इंक्लूडिंग सूरह नूर एंड सूरह बकरा और कुछ अदर सूरास के अंदर कसास से रिलेटेड या दिया तो जो हुदूद के ऑर्डिनेंस हैं उससे रिलेटेड आयात मौजूद हैं, लेकिन इन आयात को टाइम टू टाइम इज्तिहाद के जरिए से समझने की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ करें कि इनमें से किसी ऑर्डर्स के को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, फिक्री तौर पे हजम नहीं हो रहा है उनसे, और उसकी वजह से वो अगर मुखालफत कर लेता है, तो यानी उसकी मुखालफत में कोई लॉजिक और दलील है, कोई मंतिक है, या जस्ट वो जो है मुखालफत कर रहा है, मुखालफत बराए मुखालफत, ज़ाहिर मुखालफत बराए मुखालफत कर रहा है, और अगर वो मुनकिर इनकार कर लेता है इस तरह के किसी हुक्म का, तो वो फिर एक और कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन अगर वो अंडरस्टैंड न करने की वजह से, उस मसले को न समझने की वजह से, अगर उनके यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एतराज़ की शक्ल में पेश होते हैं, तो वो इतने बड़े ज़्यादा इश्यूज़ वाले मसले नहीं, उसको उसी तरह हैंडल करना चाहिए। और मैं फिर यहाँ गुजारिश करूँगा कि इस तरह की तमाम तर इश्यूज़ के अंदर हमें जो चीज़ फॉलो करनी चाहिए वो अपने मुज्तहिद के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए कि वो किसास के हवाले से क्या कहते हैं। ठीक है, हम बराह रास्त कुरान मजीद से चीज़ें समझ लेते हैं, एक लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चीज़ें हो रही होती हैं जो जाहिरी आयत के से हम नहीं समझ रहे होते हैं उस वक्त। तो बाज़ औक़ात मुखालिफत का जो अंसुर होता है या किसी ने कोई ऐसी बात की तो उसके पीछे जो चीज़ होती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग या नॉलेज की कमी या उसमें कोई गलती की वजह से होती है, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है इंशाअल्लाह। पता
अच्छा
नहीं
एक
मैं
वजाहत
आपके सवाल का जवाब दे पाया हूं या नहीं पाया।
मैंने एक वजाहत और कर दीजिए इसमें थोड़ी सी,
जी जी
और
बिस्मिल्लाह।
अगर कोई मौकिफ इस तरह का मतलब इज्तमाई मौकिफ आ रहा है, जैसे अब ये सीज फायर वगैरह के जिस तरफ मैं लाना चाह रहा था आपको कि जिस तरह की सीज फायर और उसमें जो है कुछ हामी है कुछ जो है वो बहुत ही नर्म सा वो बल्कि मुखालफ मुखाल
हेलो,
आ रही है
माइक
आपको, तो जो उस इस तरह में अगर हम मैं जो है एक सख्त मौके इख्तियार कर लूं तो उसमें कोई
अगर मैं आपकी बात अगर सही समझा हूं तो बाद में करेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपकी बात समझा तो टाइम को बचाने के लिए, वो है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है मकबूजा फलस्तीन में और गजा के हवाले से आप बात कर रहे हैं गालिबन, जाहिर है वहाँ वो लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं जो ग्राउंड में हैं और जो इस वक्त फेस कर रहे हैं सारे जुल्म और सितम को, कि उनको क्या करना चाहिए। मैं या आप में से कोई भी, अगर हम तो जो सूरत हाल है उसके हिसाब से कोई एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को, या इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती हैं मीडिया के थ्रू उसके बेस पे हम कोई एनालाइज दे सकते हैं। तो इसमें यह है कि अगर वो समझते हैं कि हमें सीज़फ़ायर की तरफ जाना चाहिए और मद्दे मुकाबिल जाने के लिए तैयार ही नहीं है। जो जालिमीन जालिम कबीला है वो तो तैयार नहीं है जाने के लिए, तो मजलूमीन की तरफ से अगर वो जाना भी चाहे तो कोई ऐसा कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो वैसे बहरहाल मैं बाय द वे एक पॉइंट बता दूं, वो ये है कि सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जालिम कबीला हो या मजलूमीन हो, पीछे होने का दोनों के पास ऑप्शन कम है और बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी। फिर भी जालिम कबीला पीछे हो सकता है क्योंकि उसके पास आगे आने के ऑप्शन ज्यादा नहीं है और मजलूमीन के पास पीछे होने का कोई ऑप्शन नहीं है। पीछे होने का मतलब ये है कि सरेंडर होना है, सब कुछ छोड़ देना है और फिर पता नहीं कितनी सदियां या दहाइयां लगेंगी कि दोबारा से आप वहां पे एक ऐसी सोच पैदा करें जो ये कहें जी मेरे घर पर जिसने कब्जा किया है उससे मैं अपना घर छुड़ाना चाहता हूं, और क्योंकि ये बातचीत से तो घर नहीं छुड़ता तो मुझे उसके लिए उसी तरह पेश आना पड़ेगा जितना मेरा इंसानियत अखलाक और जो है एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंड शुदा जो एक स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से मेरा हक बनता है, राइट बनता है कि मैं उसे हासिल करूं। तो फिर ये चीज़ सदियां लगेंगी। तो बहरहाल हम नहीं जानते, जो माहरीन हैं जो एक्सपर्ट हैं वो बेहतर इसमें कर सकते हैं एनालाइज। रही बात वहां कुर्बानियों की, सारी ये कुर्बानियां दिए बगैर तो दुनिया में कहीं पर भी कोई किसी को आज़ादी नहीं मिलती, कोई किसी का हक नहीं मिलता, खासकर जो मुस्तज़फ़ीन और मज़लूमीन है वो तो कुर्बानियां देते आए हैं शुरू से। अगर कुर्बानियों को देखकर किसी के जहन में कोई शक पैदा हो रहा है उसको मुसलमान है फौरन करबला जाना चाहिए। वहां तो सब कुछ कुर्बान किया गया, उससे बड़ी मुकद्दस हस्तियां हमारे पास नहीं थी। वो जवान देखें उससे अजीम जवान नहीं थे, फजल में, करम में, इल्म में, शुजाअत में, हर लिहाज से। खवातीन देखें, बच्चे देखें, तो कुर्बानियों की तो कोई लिमिट नहीं रही है ना, सच और हक के लिए और बातिल से निमटने के लिए कुर्बानियों की कोई लिमिटेशन नहीं है वहां पर। तो जो कुछ वहां इस वक्त, और हमारी दुआएं हैं कि जो इस्तकामत अभी तक दिखाई है बेमिसाल किस्म की वो कायम रखें। कुर्बानियां यकीनन होंगी, इससे बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन बलाखरा कुर्बानियां तो देनी ही है। जान तो जाएगी, बिस्तर है बीमारी पे एड़ियां रगड़ के मरना अच्छा है या किसी रोए जमीन के सबसे बदतरीन जो है और गैर इंसानी सलूक करने वाले ऐसे जालिमीन और कातिलीन के हाथों जामे शहादत पीना अच्छा है? डेफिनेटली पता है सबको। जी
सही है। तो ये सही है भाई, कल मैं फिर से और ये सही है दामाद।
जी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
जी, मेरे दो क्वेश्चन है।
सिटी
एक
बता दीजिए आप पहले।
इस्लामाबाद, एक तो मेरी जो है ना वो काफी सारे अलामास को मैंने सुना है, शिया अलामास को, जिससे मैं डिटरमिन करने की कोशिश करती हूँ कि क्या बिलीव सही है और क्या जो है ना उनमें गलत है। बहुत सारी चीजें जो है ना, जहाँ भी तारीख हिस्ट्री हम देखते हैं उसमें सारी चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे वही सही नजर आती हैं जो शिया अलामाज बयान करते हैं। लेकिन एक चीज मुझे हमेशा ही कंफ्यूज करती है, वो पहले भी मैं सवाल पूछ चुकी हूँ लेकिन मुझे उस तरह से उसका सिरे हासिल जवाब नहीं मिल पाया। वो एक तो ये कि शिर्क बेसिकली है क्या, क्योंकि शियत में मतलब मुझे नहीं पता, जो आम खवातीन जो सिरे से पढ़ी लिखी नहीं है और हर बात के साथ जो है वो आइमा मासूमीन को रिलेट करना या उनसे दुआएं मांगे जाना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इसकी शरई हैसियत फिर क्या होगी। सेकेंडली, इमाम जो इमाम अली और उनकी औलाद के जो मकासद थे वो बहुत वसी थे, उनकी शहादत के जो वो थे मकासद वो भी बहुत वसी थे, तो हमने उनको मन्नतों मुरादों के साथ रिलेट करके इंतहाई महदूद कर दिया, जबकि उनका जो मकसद था दुनिया में वो बेसिकली आखिरत की जिंदगी के साथ ज्यादा रिलेटेड था कि हम जो है वो दीन को समझें और आखिरत में निजात पा जाएं, तो वो मकसद कहीं पीछे चला गया। जितनी हमारी मजालिस हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ गिरिया और मोस्टली जो है ना वो इल्म की बात नहीं होती, ना ही कुरान पाक पढ़ने की बात होती है, बल्कि ज्यादातर लोग अगर कोई पढ़ भी रहा है तो उसको डिस्करेज करते हैं कि जी नहीं समझ ही नहीं आ सकता। एक तो ये चीज मुझे पूछनी है इसके ऊपर, क्लियर जो है ना वो क्या आंसर है इसका। लेकिन कुछ ऐसे अलामाज भी हैं जो बड़ा अच्छा क्लियर समझाते हैं कि ऐसे नहीं करना आपने, लेकिन आधे कहते हैं जी कोई हर्ज नहीं है। सेकंड जो मेरा जवाब वो है क्वेश्चन, वो ये है कि जैसे इमाम मेहदी के गैबत के बारे में है, अब सुनियों का स्टांस ये है कि वो पैदा होंगे, इनका है ये गायब होंगे, तो इसकी कोई बहुत वाजे क्या दलील है कि हमें ये पता है कि वो गायब में है। जजाक अल्लाह खैरन कसीरा।
जी बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि बहुत सारी इश्यूज आपने रेज किए हैं और मुझे इसलिए बहुत, क्योंकि मैथमेटिकल तरीके से तो आंसर नहीं हो सकते हैं कि 2 + 2 = 4 हो गए वसलाम। ये क्योंकि इल्मी बहसें हैं और मुझे एट द सेम टाइम दूसरों का टाइम का भी ख्याल रखना है। क्या अकीदा सही है क्या गलत है? जाहिर है अकायद के सिलसिले में आजकल तो इतना मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने सारे वसाइल आ चुके हैं, डिजिटल से लेकर स्मार्ट वसाइल से लेकर और पुराने वसाइल तक मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन जितने हमारे अकायद हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ ज़ोक और मिजाज के लिए उलमा ने बहुत कुछ लिखा भी है, बोला भी है और बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। एक अच्छा कहा कि कंफ्यूज करने वाली जो चीज़ है वो शिर्क से रिलेटेड है। शिर्क के बारे में क्लियर है कि खुदा का किसी किसी और चीज को खुदा की यानी उलूहियत जिसको कहता है वजूद ए खुदा और इसी तरह बंदगी ए खुदा और खालिकियत ए खुदा में किसी और को शरीक बना देना, ये शिर्क है। फिर सिर्फ कभी तौहीद के मुकाबले में आती है, कभी सिफात खुदावंदी के मुकाबले में आती है, और फिर शिर्क की अपनी कैटेगरीज हैं। शिर्क खफी कहा गया है, खफी मखफी, मखफी यानी पोशीदा, पोशीदा शिर्क यानी जिसमें अगर बंदा थोड़ा सा उसको अटेंशन किया जाए कि जनाब ये जो बात आप कह रहे थे ये शिर्क है, तो वो फौरन अटेंशन हो जाता और कहता नहीं 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 मैं कह तो यही रहा था, लेकिन इससे मुराद में शिर्क करना नहीं था, लेकिन वो असल में जो कह रहा होता है वो शिर्क ही होता है, शिर्क खफी जिसको कहा गया है। और इसी तरह फिर शिर्क जली है, खुला वाज़ शिर्क है, जिसमें जो बंदा कह रहा होता है उसके हवाले से वो खुद अटेंशन भी रखता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये एक्चुअली शिर्क है, लेकिन उसके बावजूद मैं यही अकीदा रखता हूँ। एक छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं, शायद मैंने पहले भी कोट किया हो या किसी और महफिल में, कि जैसे एक नॉर्मल वर्ड्स होता है कि हम कहते हैं पहले खुदा और उसके बाद जो है फलां शख्स की वजह से मेरी प्रॉब्लम हल हो गई, तो छठे इमाम ने फरमाया कि आप इस तरह ये बात ना करें, ये एक शिर्क खफी है, असल में ये शिर्क खफी की शायल था जिसके मसले को इमाम की, तो वो शुक्रिया अदा करने इमाम के पास आया और इमाम से मुलाकात करते ही उस शख्स ने जो है एक ऐसा वर्ड यूज किया जो नॉर्मली हम अपनी लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, कि फरमाया कि खुदा के बाद अगर आप ना होते मेरे इमाम, तो इमाम ने फौरन उसे रोका और कहा कि यूं मत कहो, ये शिर्क है, यानी शिर्क है, उलमा कहते हैं शिर्क खफी है, पोशीदा शिर्क है, क्योंकि उस बोलने वाले का इरादा शिर्क करना नहीं है, शरीक करार देना नहीं है। इमाम ने फरमाया यूं कहो कि मैं उस खुदा का शुक्रगुजार हूं कि जिसने आपके वसीले से मेरा मसला हल कर दिया, आपके जरिए से मेरा मसला हल कर दिया। तो ये शिर्क खफी की अलामतें हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अलबत्ता मैं यहाँ थोड़ा सा एक टच कर लूँ, बनी उमैया के बारे में वो कहते हैं कि बनी उमैया जो है शिर्क नहीं एजुकेट करते थे, शिर्क से रिलेटेड अहादीस पे बैन लगा दिया था, क्योंकि वो खुद कुछ ऐसे काम कर रहे होते थे जिसमें जो है वो एक तरफ मसले जबर को तरवीज देते थे और दूसरी तरफ मसले शिर्क के तौहीद पढ़ाते थे, शिर्क नहीं पढ़ाते थे, ताकि लोग जो है उनके मुशरिकाना अमल के हवाले से एतराज ना करें। तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि इसको ना समझा जा सके। इतनी सारी किताबें मैं इसमें रेकमेंड कर सकता हूँ। एक किताब उर्दू में मौजूद है, शहीद आयतुल्ला मुर्तजा मुतहरी की किताब है तौहीद के नाम से, उसमें शहीद ने तौहीद को डिफाइन किया है और तौहीद जाहिर है कि शिर्क तौहीद के अपोजिशन में खड़ी होती है और शिर्क को भी वहां पर गुफ्तगू किया है। इसके अलावा आयतुल्ला मिसबाह यजदी की किताब जो अकायद के ऊपर है, जो उर्दू ट्रांसलेशन हो चुकी है, प्रिंट भी हो चुकी है, शायद पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाए, जो अकायद के उसूल दीन के ऊपर है ये किताब। थोड़े सी फलसफियाना अंदाज जरूर है इस किताब का, अलबत्त शहीद मुतहरी की किताब का भी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करके बयान किया है। तीसरी चीज आपने कहा जी आइमा के मकासिद के हवाले से और हमारी सोच, और फिर आपने कहा कि असल में आइमा का मकसद हकीकी दुनिया और हकीकी जिंदगी, परमानेंट जिंदगी, वहां पर असल में नजात दिलाना है, असल मकसद है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए बहुत से रिवायात के अंदर फरमाते हैं कि देखें, तुम अपनी कीमत जो है ना दुनिया मत लगा लेना, बहस से कम किसी चीज पर राजी मत होना कभी भी, यानी तुम्हारी जो कीमत है ईमान की, अमल की, तुम्हारी जिंदगी की, वो बहस्त है, मिनिमम थिंग इज बहस्त। बहस से कम पे राजी मत होना कि दुनिया में कोई मकसद हासिल हो गया, बस मैं राजी हूं इसके, उसके बदले में मुझे ईमान देना पड़ा, उसके बदले में मुझे अखलाक देना पड़ा, उसके बदले में मुझे हया देना पड़ा, उसके बदले में कोई भी ऐसे वैल्यूज को की कीमत देनी पड़ी, मुकाबले में मुझे दुनिया की कोई फायदा मिल गया, तो कहता ये बहुत ही हकीराना और पस्त किस्म का डीलिंग है जो आपने किया है। लेकिन इससे ऊपर भी एक कैटेगरी है, मैंने शुरू में अर्ज किया था कि मैं एज ए दीनी स्टूडेंट, हमारा ये होता कि लोगों के पास मैक्सिमम की तरफ जाएं, मिनिमम पे रुक ना जाएं। ये है कि मौला फरमाते हैं कि आप बहस की लालच में भी खुदा की इताअत ना करें, बल्कि क्योंकि खुदा साहिबुल इताअ है, वाजिबुल इताअ है खुदा, क्योंकि इताअत के अलावा किसी की इताअत और बंदगी हो ही नहीं सकती, और आशिकाना अंदाज से आप खुदा की इताअत करें, चाहे आपका माशूक बदले में आपको बहस दे या ना दे, आप छोड़ें बहस को, भूल जाएं, आप कहें भाई मैं खुदा का बस बंदा हूं, क्योंकि खुदा ही है जिसकी बंदगी हो सकती है, मैं इश्क खुदा में हूँ, इश्क इलाही में हूँ, जिसको कहा गया कि वो स्टेज जहाँ पर इंसान आशिक खुदा बनता है, और एक मरहला ऐसा भी आ सकता है कि इंसान आशिक से निकल कर माशूक खुदा बन जाता है, यानी एक होता है कि मुहिब खुदा है, फिर एक मरहला आता है कि महबूब खुदा है, ये महबूब खुदा बने, खुदा अब उस बंदे से, खुदा के नजदीक वो बंदा खुदा का महबूब बंदा बन गया, खुदा का माशूक बंदा बन गया, पहले वो आशिक था, पहले मुहिब था, अब महबूब वो माशूक बन गया। ये असल में कहते हैं कि किसी भी बंदे खुदा के लिए आखिरी स्टेज होती है, बहस वगैरह फिर बहुत नीचे रह जाती हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जो कि हम बिल्कुल ही नीचे कैटेगरी में हैं, हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज ये है आइमा अलैहिस्सलाम के पीछे चलें, उनकी सीरत पर अमल करें, उनके बताए रास्ते पर चलें, मिनिमम थिंग ये है कि आखरत में नजात पाएं, मिनिमम ये है कि हम बहश के हकदार बन जाएं, मिनिमम ये है कि हमें शफाअत के काबिल बन सकें, मिनिमम ये है कि वो हमें अपने फॉलोअर्स की लिस्ट में शामिल कर लें, ये बड़ी बात होगी कि हमें अपने शिया होने के, फॉलोअर्स होने की लिस्ट में ही डाल दें, ये बड़ी बड़ी ही हमारे लिए एजाज की बात होगी। अगर ची निगाह बुलंद सुखद दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रख्त सफर मीर कारवां के लिए, निगाह को बुलंद रखना चाहिए कि हम महबूब खुदा बने, माशूक खुदा बने मुहिब बनने के बाद इंशाल्लाह। फिर फरमाया आपने कि सवाल किया कि इमाम के गैबत और विलादत, सारे अहले सुन्नत के हाँ ये सिर्फ विलादत के कायल नहीं है, कुछ उलमाए कराम गैबत इमाम के कायल हैं, यानी विलादत हो चुकी और इमाम गायब हो इस बात के कायल हैं, अलबत्त मेजोरिटी इन जनरल अहले सुन्नत के हाँ, जिसके ऊपर कहते ना इजमा है, इतफाक है, वो जो है ये है कि विलादत होगी आखिरी जमाने में। उनके कुछ उलमा ने रिसेंटली कुछ इंटरप्रिटेशन की है इस लफ्ज विलादत की, जो उनके पास मौजूद अहादीस में है, वो विलादत कहा उस जहूर को ही विलादत कहा गया, क्योंकि विलादत का लफ्ज हमेशा किसी बच्चे के माँ के पेट से पैदा होने को नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि कहते हैं कि मसन बाज औकात जिसको हम और आप कहते हैं निशात सानिया, यानी रोनासांस जिसको कहा जाता है, फ्रेंच जो अरब इंग्लिश में लफ्ज आया है, एक नई जिंदगी पाना, नई नया जन्म लेना उर्दू में इस्तेमाल होता है, तो इस मीनिंग्स में है। ये कुछ उलमा ने अभी रिसेंटली जो उनके दानश्वर तबका है उन्होंने कहा है कि यहाँ जो इमाम मेहदी की विलादत की जो हदीसें हैं वो मीन्स ये है कि यानी इमाम इस दुनिया में वापस गैबत से आने आएंगे, कान्हू जैसे कि उनकी विलादत हो गई है वगैरह वगैरह। तो ये इस माने में है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल में। मेन इशू ये है कि वो भी बिलीव रखते हैं कि इमाम मेहदी खानदान इस्मत व तहारत से ताल्लुक रखने वाली एक हस्ती इस दुनिया में जुल्म व जोर के खात्मे के लिए तशरीफ लाएगी, अदल व इंसाफ का निज़ाम इलाही कायम करेगी। इस पे हम सब मुत्तफिक हैं। अब कैसे वो तशरीफ लाएगी, इसके ऊपर माइनस चीजों पे इख्तलाफ हो, वो मेन इशू के ऊपर इख्तलाफ नहीं है। इमाम की विलादत हो के तशरीफ लाते हैं या जो है इमाम विलादत हो चुकी है गैब में है जहूर करते हैं, इस ये मसला इतना वो भी इस बात के कायल हैं कि उस इमाम मेहदी के जहूर के लिए ग्राउंड हमवार करना चाहिए। खैर, हमारी तरह इंतजार फरज जैसा मफहूम और गहराई और एक तहजीब और सकाफत और एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद की तरह तो नहीं है, लेकिन कंसेप्ट फिर भी उनमें मौजूद है। अगरचि ये कंसेप्ट और अदियान हत्ता गैर आसमानी मजाहिब में भी और फलसफा या सोशल साइंसिस के अंदर भी ये नजरिया और थ्योरी मौजूद है कि आखिरकार दुनिया का जो दी एंड है वो जो है अच्छे पे होगा। हमने गुज़श्ता नशिस्तों में ब्रेटन रसल की किताब का हवाला दिया था और इसी तरह कुछ और दानिश्वरों के नजरियात पेश किए थे कि जो ये कहते हैं कि क्या इंसानों के पास कोई फ्यूचर है कि नहीं है, इस दुनिया का दी एंड किस चीज़ पे होने वाला है, या जो है दुनिया तबाह बर्बाद होकर ख़त्म हो जाएगी जैसे कि बहुत सारी हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है, ड्रामा सीरीज के अंदर दिखाते हैं, दुनिया खत्म हो चुकी है, आर्मगेडोन हो गया, कयामत आ गई, बर्बाद हो गया, या जो है कोई और थ्योरीज भी मौजूद हैं। जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
जी वालेकुम
जी सलाम वालेकुम।
सलाम वरहमतुल्लाह।
जी मेरा नाम हसन है, मैं हिंदुस्तान हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से आपका
बिस्मिल्लाह
ये टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो इस ज़ेल में मैं
माशाल्लाह।
एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो
जी बिस्मिल्लाह।
मेरा कुछ ऐसा सवाल तो नहीं है, लेकिन एक एक वाक़या है जो पेश आया है, जिसकी जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था। एक्चुअली देखिए किबला क्या हुआ, एक 2 साल पहले मेरे एक फ्रेंड हैं पहचानत के, उन्होंने कहा है, ये मुहर्रम का वाक़या है, कि उन्होंने ख्वाब में देखा है कि वो एक निशिस्त में बैठे हुए हैं, वहाँ पर हमारे 12वें सरकार तशरीफ़ लाते हैं और वो कहते हैं कि सारे लोग मुहर्रम की रसूमात में बहुत मसरूफ़ हैं, हमारी और हमारी तालीमात की किसी को परवाह ही नहीं। ये उन्होंने देखा और देखकर नींद से बेदार हो गए और जाकर काफ़ी आलिम दीन को ये बात बयान की। तो ये बात मुझ तक भी आई, तो मैं सोचा क्योंकि ये इमाम ज़माना का ही टॉपिक है, तो ये बात आपके भी पेशे नज़र करूं, ताकि है ना हमारे लोग ज़रा तालीमात मौला के तालीमात की तरफ ज़्यादा रुझान करें, बनिस्बत उनके आजकल के जो रसूमात हैं उस पर जिस तरह से फोकस की जा रही है। ये आप तक बात पहुँचाना था।
जी बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम को आलम ख्वाब में देना देखना जाहिर है कि बशारत भी है, सआदत भी है, और ऐसे ख्वाब अपनी जगह पर देखने वाले के लिए मैसेज भी रखते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं मेंशन करूँगा, वो ये है कि ये ख्वाब हुज्जत नहीं है। हुज्जत का मतलब क्या है? हुज्जत मतलब यानी रिवायत मुस्तनद है तो वो हुज्जत है, आयत हुज्जत है। मासूम ने कोई अमल अंजाम दिया है और वो अमल हम तक मुस्तनद जराए से पेश होता है, पहुंचता है, तो वो हमारे लिए दीन है, हुज्जत है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ख्वाब में इमाम की जियारत की और इमाम ने ये हुक्म दिया है आज के बाद आप सब जो है फलां नहर का पानी मत पिए, इमाम का हुक्म है, तो ये हुक्म हुज्जत नहीं है। हम ऐसे हुक्म को नहीं मानेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्या इमाम इमाम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं? जी बिल्कुल तशरीफ लाते हैं। क्या जियारत नसीब कराते हैं? जी, हमारे भाई ने जो ख्वाब बयान किया उसके अंदर इमाम ने उनको नसीहत की है, और ए नसीहत उनके लिए जाहिर है कि ऐसी चीज नहीं है जो एक नई चीज हो, बल्कि पहले से ऑलरेडी इमाम और इमाम के आबा व अजदाद ने जो नसीहतें की हैं वही नसीहत है जो इमाम ने उस ख्वाब के अंदर बयान किया है। तो इसी ऐसे चीज के ऊपर अमल करते हुए शरीयत के अतबार से और अइम्मा के ने जो उसूल व जाबता दिया है उसके अतबार से किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और ये अगर ख्वाब उस भाई ने देखा है तो यकीनन इमाम यही रहनुमाई करना चाहते हैं कि आप लोग फजूलियात और रसूमात से ज्यादा दीन के पीछे जाएं। मेंबर की लकड़ी को चूमते रहते हो लेकिन साहेब मेंबर की बात को चूमने के लिए तैयार नहीं हो, उसके पैगाम को चूमने के लिए तैयार नहीं हो। तो दोनों में फर्क करो, जरा ये चीजें जरा समझा करो। मेंबर का एहतराम करते हो जिस पे उस वजूद ताहिर व मुतहर ने तशरीफ रखा था, यकीनन ये बहुत बड़ी अजमत है, लेकिन वहां तशरीफ रखने के बाद उस लकड़ी, वो लकड़ी मुतबर्रिक हो चुकी है मेंबर की, तो उस वजूद का जो पैगाम है क्या उसमें तबर्रुक नहीं है? क्या उसमें वो अहम नहीं है जिसकी खातिर वो मेंबर बना था, जिसकी खातिर जो है वो वजूद वहां पे तशरीफ रखता था? बहरहाल, तो आपका शुक्रिया जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
जावेरिया फातिमा,
सलामुअलैकुम, लाहौर से
वालेकुम
बात कर
सलाम।
रही। और
जी जी
आगे से अभी एक क्वेश्चन पूछा किसी ने, साहिब जमाना जो डाला शरीफ मौला को ख्वाब में देखने का, तो
अच्छा,
हमारे बहुत कोई रिलेटिव या कोई बहुत क्लोज बिलोंगिंग भी अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम उनको ख्वाब में देखते
नहीं
हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत क्लोज होते हैं। तो हम मौला से दुआ भी करते हैं, मौला से ये भी कहते हैं कि हम मौला को बहुत प्यार करते हैं, बट फिर हम मौला को क्यों नहीं ख्वाब में देखते? मौला हमारे ख्वाब में क्यों नहीं? फिर
जी बेटा बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाब में देखना जरूरी नहीं है, यानी ये कोई ऐसा प्रिंसिपल और उसूल नहीं दिया है कि मैं, अब मुझे लगता है कि विथ रिस्पेक्ट, लेकिन मैं कुछ साइड्स को एड्रेस करना जरूरी अब महसूस कर रहा हूँ, खासकर हमारे बच्चों की तरफ से भी जो फीडबैक सामने आ रही है। नंबर एक, क्या ख्वाब में देखना जरूरी है किसी भी इमाम को? अगर किसी ने ख्वाब में देखा है तो जरूर है कि वो कोई बहुत बड़ा अजीम आदमी है, इसलिए ख्वाब में देखा है। क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया हमारे पास है? किसी मासूम ने आया बयान किया हो कि अगर किसी ने इमाम मासूम की जियारत ख्वाब में कर ली तो इसका मतलब वो बंदा मुत्तकी, परहेजगार, आदिल है, उसकी गवाही ले लो, आंखें बंद करके उसकी बात पर अमल करो, कोई ऐसा मैयार दिया है हमें? नहीं। क्या कहा, जो ख्वाब न देखे, जिसने ख्वाब में इमाम की जियारत नहीं की है पूरी लाइफ में, फर्ज करें कि खुदा ने किसी को 110 120 ईयर्स दे दिया और एक बार भी उसने नहीं देखा ख्वाब में इमाम को, हम कहेंगे बुरा आदमी है, गलत आदमी है, यानी ऐसा कोई क्राइटेरिया है? नहीं है। तो बस इमाम को ख्वाब में देखना कुछ जरूरी अमर नहीं। अगर कुछ लोगों को इमाम जियारत हो जाती है ख्वाब में, किसी शक्लो सूरत में आदमी देख लेता है, उसमें कोई ऐसी बातचीत होती है, कन्वर्सेशंस होती हैं, उसके अपने शरी हुदूद हैं, आम नसीहतें हैं, कोई वो है, मैंने अर्ज किया अगर शरी कोई हुक्म आ रहा है जिसका हमारे पास पहले से कोई चीज मौजूद नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, हम नहीं एक्सेप्ट, क्योंकि उसी इमाम ने हमें ऑर्डर दिया है कि आपने मानना नहीं है। एक, अब मैं थोड़ी सी एक और पहलू से बात करना चाहूंगा और इंशाल्लाह कि हमारी जो बेटी जिसने बात की थी वो समझ जाएंगी, मैं कोशिश करता हूं कि उसके हिसाब से समझाने की। वो ये है, हमारे दीन का कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो ख्वाबों के जरिए से बना हो। मसलन कहा हो जी कि ये रिवायत ख्वाब में फला आलिम ने ख्वाब में इमाम से ली थी तो इस वजह से ये शरी हुक्म किताब में आ गया है, एक भी नहीं है और ना हो सकता है, ना होगा। और अगर कोई लाएगा तो हम उसे उठा के फेंकेंगे। इमाम ने फरमाया दीवार पे दे मारो या दरिया में फेंक दो, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उसी इमाम ने ऑर्डर किया है कि ये ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी। कि ख्वाब में देखा था तो फलां आदमी को ये कहा, फिर वो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, ये नहीं है। अगर मैं बेनमाने एक दीनी तालिब इल्म के आप सबको आपकी रूह को नरम करने के लिए, आपको थोड़ा अटेंशन दिलाने के लिए कुछ ऐसे कहानियां किस्से सुनाऊं जिससे आपकी अट्रैक्शन मुझे हासिल हो जाए, जिसमें फलां आलिम ख्वाब में मिला, फलां जगह पे एक शख्स जा रहा था तो उसके साथ ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे एक शरी एविडेंस के तौर पर लेके आर्ग्यू करें और उसके बेस पर एनालाइज करने बैठ जाएं कि मुझे ख्वाब में इमाम नजर नहीं आया, इसका मतलब मैं बुरा आदमी, फला ने देखा इसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़ा ऐसा आदमी है, उसने देखा उसको सादत, तुझे अच्छी बात, क्योंकि इमाम को ख्वाब तो छोड़ें, डायरेक्टली देखने के बावजूद इमाम के मुखालिफिन थे, कातिलीन भी थे, बग्ज रखने वाले भी थे, अच्छे लोग भी थे, सुस्त लोग भी थे, कमजोर लोग भी थे, गुनाहगार भी थे, खताकार भी थे, परहेजगार भी थे, मुत्तकी भी थे। तो ये कोई स्टैंडर्ड और मैयार नहीं है। अगर मैं आपको ख्वाबों की बातें ज्यादा सुनाऊं तो इसका मतलब मुझे आपको असल में उस मैटर की तरफ अटेंशन कराना है, आपकी रूह को नरम करना है, प्लीज उसको उसी लेवल पर ले लें। बाज कहानियां फर्जी भी हो सकती हैं, क्योंकि फर्जी मिसालें दी जाती हैं इंसानी जहन को उस सोच के करीब लाने के लिए, इंसानी रूह को नरम करने के लिए, ऐसी बहुत सारी फर्जी कहानियां कहते बतौर मिसाल, मसलन कुरान ने भी मिसालें दी हैं, जरब अल्लाह मसलन बऊदतन मसलत का, मक्की की मिसाल देता हूं मैं, उसकी मिसाल समझाने के लिए, अब ये नहीं कि उसके पीछे पड़े रहें। और तो ये प्लीज बी केयरफुल, मुझ जैसे यानी तालिबे इल्म ये बातें कर सकते हैं, जस्ट आपको वाज व नसीहत करने के लिए, और वाज व नसीहत की दुनिया में इस तरह की सिंपल सिंपल बातें होती हैं, और उसको आपने एक एविडेंस और एक उसको आपने एक आर्ग्यूमेंट और एक दलील के तौर पर पेश नहीं करना है इंशाल्लाह। और हमारी दुआ है कि हम सबको ज्यारत नसीब हो दुनिया और आखिरत दोनों में, चाहे रोजे इमाम में जाकर ज्यारत नसीब हो मारिफत के साथ, या इमाम की का दीदार नसीब हो असर जहूर में, या अगर इमाम के जहूर से पहले मर जाएं तो दुआए अहद में हमें सिखाया गया कि आप ये कहें, दुआए अहद में ये आरजू रखें कि अगर मैं मर जाऊं जहूर से पहले तो कफन के साथ अपने असलहे को थामे, रजात में अपनी कब्र से निकलकर वापस आ जाऊं इंशाल्लाह। जी आगे बढ़ते हैं। वालेकुम
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वजान।
सलाम व रहमतुल्लाह।
हम पाकिस्तान से अर्ज़ कर रहे हैं, साहिवाल से।
बिस्मिल्लाह।
बहुत शुक्रिया आपके लेक्चर का। पूरा तो हमने नहीं सुना, अभी मौजूदा जो आप आंसर दे रहे थे तो उसमें से आपने जो ख्वाबों के हवाले से फरमाया तो उसके हवाले से एक पॉइंट हमारे जहन में आया कि ख्वाबों के इम्पोर्टेंस और उसके हवाले से यहाँ पे भी लेक्चर्स चल रहे हैं और एक गैप की दुनिया के हवाले टॉपिक है वो, और उसमें ज़्यादातर फोकस ख्वाब ही है। उसके ज़रिए ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि बरज़खी लाइफ को हम ख्वाबों के ज़रिए ही समझ सकते हैं। और फिर आगे ने एग्जांपल्स भी दी हैं उसमें, जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम और अम्बिया की मतलब है जो ख्वाब थे और जो इल्हाम उन पे आते थे। तो ख्वाबों की अहमियत के हवाले से आप क्या फरमाएंगे इस लिहाज से जिस एंगल से यहाँ पे बताया जा रहा है और बहुत ही अच्छे अंदाज में समझा रहे हैं, तो आप इस पे क्या फरमाएंगे?
जी देखें, अब टॉपिक थोड़ा सा और साइड पे चला गया। वो ये है कि नबी का ख्वाब सच्चा है या झूठा है, इमाम में मासूम का ख्वाब क्या होगा? जाहिर है नबी नबी है, उसका ख्वाब भी सही है, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल का, लॉट ऑफ अदर मसलन बहुत सारे इस तरह के वाकयात हमारे पास मौजूद हैं, और वो हुज्जतियत रखते हैं उनके लिए, और नबी का कौल इमाम मासूम का कौल हमारे लिए हुज्जत रखता है। बात खत्म हो गई, यहाँ पर तो कोई ऐसी डिबेट की जरूरत ही नहीं रही है, बात हो रही है हमारे ख्वाब की। अच्छा अब आते हैं एक और चीज, काजी ख्वाब एज ए एग्जाम्पल, इट कुड बी एग्जाम्पल फॉर द आलम ए बरजख एंड अदर क्या कहते हैं मेटाफिजिक्स थिंग्स, यानी जैसे आलम अल गैब है उसको समझने के लिए एग्जाम्पल्स दिए। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजों से, मॉडर्न साइंस से भी एग्जाम्पल दी जा सकती है बहुत सारी चीजों को समझने के लिए। मसलन हमारे पास उसूल काफी में एक बड़ी हदीस है जिसके ऊपर ये है कि इससे पहले इमाम फरमाते हैं कि शुरू में जो इंसान थे वो ख्वाब देखते ही नहीं थे। तवील हदीस है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, वो ख्वाब देखते ही नहीं थे शुरू शुरू में। तो हुआ यह कि कुछ नबी आए किसी कबीले में और उनको उनको बताया कि देखो मरने के बाद एक जिंदगी है और वो जिंदगी हमेशा है, उस जिंदगी में कोई द एंड नहीं है, वो इससे ज्यादा अच्छी जिंदगी है, वहां पर जो है ना ये होगा ये होगा, एक जन्नत नाम की जगह है एक जहन्नम नाम की जगह है। अच्छा जब तक जन्नत और जहन्नम में आप नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक आप एक दरमियानी जगह में रहेंगे जिसको बरजक कहा गया है। अच्छा बरजक के अंदर भी तुम्हारे जो आमाल हैं उसके हिसाब से तुम मुख्तलिफ कैटेगरीज और एरियाज और सेक्टर्स और टाउन्स और में रह सकते हो। तो वो कहने लगे कि भाई देखें ये क्या अजीबो गरीब बातें कर रहे हो। कहा कि हम तो ये देखते हैं कि जो भी जिंदा इंसान है वो मरता है, उसका जिस्म गल सड़ के कुछ अरसे के बाद मिट्टी बन जाता है और उसके जर्रे भी खत्म हो जाते हैं। अब आप कहते हो कि एक अलग दुनिया है, दुनिया में तो हमने किसी जिस्म को जाते देखा ही नहीं है, हमारे जानवर मरते हैं तो भी हमने यही सूरत हाल देखी है, हमारे अपने इंसान मरते हैं, रिश्तेदार मरते हैं, कब्रों में डालते हैं, देखो कब्र के नीचे कुछ बचा नहीं होता। अब आप कहते हो कि और दुनिया में चले गए हैं, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। ये मेटाफिजिक्स को समझ नहीं पा रहे थे। उसूल काफी की मैं तवील हदीस पढ़ रहा हूँ छठे इमाम की। इमाम फरमाते हैं उन नबियों ने खुदा से इल्तिजा की कि खुदाया ये थोड़ी मोटी अकल के लोग हैं, यानी ये लफ्ज मेरी तरफ से है क्योंकि जो वर्ड्स वहां यूज हुए हैं उसका शॉर्ट फॉर्म यही है कि अब इनको ये मेटाफिजिक्स यानी जिसको हम गैब कहते हैं और गैब पर ईमान ही बहुत अहम तरीन चीज है, अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब व युकीमून सलात पहला आखिर ही, और नबियों के आने के वन ऑफ द रीजन इस गैब है, गैब पर ईमान रखना है। तो कहा कि ये इनकी समझ में नहीं आ रही है, मोटी अकल में बात पल्ले नहीं पड़ रही है। तो फिर खुदा ने ख्वाब दिखाना शुरू कर दिया लोगों को। अब लोग हो गए परेशान, क्या हो गया उनके साथ, रात को सोए थे तो देखा कि कुछ अजीबो गरीब दुनिया में बैठे हैं, कहें किसी से लड़ रहे हैं, कहें कुछ खा रहे हैं, कहें कुछ पी रहे हैं, और अजीब और गरीब किस्म की चीजें वो देख रहे हैं जो इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी चीजों का तसव्वुर तक नहीं किया था, यानी पहले वो ख्वाब ही नहीं देखते थे। अब वो परेशान हो गए, अगले दिन सुबह कहने लगे कि भाई रात में तो एक अजीब सी दुनिया में था लेकिन जब मैं नींद से उठा हूं तो देखता हूं नहीं, मैं तो अपने घर पे अपने बिस्तर पे बैठा हुआ हूं। तो ये क्या चीज थी जो अब होने लगी है हमारे साथ, एक अनहोनी किस्म की बातें होने लगी हैं। का यार ये बातें कुछ ऐसी मिलती जुलती बातें, वो जो दो तीन बंदे आए हैं ना जो कहते हैं हम खुदा की तरफ से आए हैं, नबी हैं, कोई अलग दुनिया है, कुछ जन्नत है कुछ जहन्नम है, वो ऐसी ही बातें कर रहे हैं जो रात हमने देखी है। चलो जरा उनसे पूछते हैं, वही उनको पता होगा इन चीजों का। वो गए और कहा भाई हमने तो रात को इस तरह की चीजें देखी लेकिन हकीकत में तो हम वहां थे ही नहीं, हमारा जिस्म तो इधर है, तो क्या आप कैसे हमें समझाएंगे ये क्या चीज थी जो हमने हम जहां पर गए हैं रात को और हम नहीं गए हैं, एक बड़ी अजीब किस्म की कंफ्यूजन है। उन्होंने कहा वही तो हम तुम्हें समझा रहे थे कि एक और दुनिया है, जिस्म को फानी होते हुए मिट्टी में मिलते हुए देखकर मत ख्याल करो कि ये दुनिया नहीं, वही गैब है, ये ख्वाब खुदा ने तुम्हें दिखाया ताकि तुम इमेजिनेशन करो उस दुनिया के बारे में, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ गेस करो कि वो किस तरह की दुनिया है, बरजखी दुनिया कैसी है, बहेश तो बहन क्या है, गैब से रिलेटेड चीजें कैसी हैं, कुछ ना कुछ अंदाजे लगा सकते हो ना कि अब तुम्हें पता तो चल गया ना, पहले तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा था कि कोई और दुनिया भी है, अब तुम्हें अंदाजा हुआ एक और दुनिया है ख्वाब के जरिए से। ये है ख्वाब की रियलिटी, ये है ख्वाब की फिलॉसफी। अब मैं इमाम जमाना को ख्वाब में ना देखूं तो परेशान हो जाऊं, मुझे ख्वाब में देखना कोई जरूरी है, हमारे अकायद का हिस्सा है, कहें फरोहदीन में लिखा है, वन ऑफ द फरोहदीन इज ये कि हर आदमी मरने से पहले एक बार इमाम जमाना को ख्वाब में देखेगा। कहें लिखा है उसको इमाम जमाना को ख्वाब में देखना कोई फजीलत तो बरतरी बयान की गई है, उसको कोई सर्टिफिकेट पकड़ा दिया है किसी हवाले से? नथिंग, नो। ख्वाब देखा है, ठीक है, आपने सआदत पाई, अल्हम्दुलिल्लाह, हिदायत पाओ। हो सकता है बाज औकात इमाम जमाना ख्वाब में आए किसी गुनहगार के ख्वाब में आए ताकि उसको हिदायत दे, किसी जालिम के ख्वाब में आए ताकि वो जुल्म ना करे, ये हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर ख्वाब देखने वाला वो बहुत बड़ा बरगुजीदा आसमान में पहुंचा हुआ कोई माशूक को महबूब खुदा बन चुका हो, ये जरूरी नहीं है। चश्मे बरजखी खुल गई हो कोई जरूरी नहीं है। हिदायत देने के लिए भी इमाम, इमाम हर इंसान के इमाम है, वो जरूरी नहीं मोमिन ही ख्वाब में देखे, मुशरिक भी देख सकता है, मुशरिक से मिल भी सकते हैं इमाम, मुलाकात भी कर सकते हैं, बिलमुशाफा दीदार हो सकता है, पहचाने ना पहचाने अपनी जगह उसे हिदायत देने के लिए इमाम आ सकते हैं। इमाम हादी इंसान है, न कि हादी शिया, न कि हादी एक मखसूस लोग, मातमी संगत वाले, अंजुमन वाले, तंजीम वाले, जमात वाले, ग्रुप वाले, इमाम पूरी कायनात का इमाम है, और हर इंसान और हर जी रूह और हर जर्रे का इमाम के ऊपर हक भी है। बेनवान इमाम कहता, इमाम आप मेरे इमाम हैं, इस इनवान से मुझे हिदायत चाहिए आपसे। ये हम शिया सिर्फ दावा लगाते ना बैठे कि हम ही इमाम के मानने वाले, इमाम हमारा, बाकियों का कोई लेना देना नहीं है। जी माजरत, इसको खोलना पड़ गया मल्टीपल क्वेश्चंस की वजह से, तो ज्यादा डिटेल में हम चले गए, नेक्स्ट पे जाते हैं प्लीज।
जी, और किसी का सवाल हो तो हैंड रेस कर सकते हैं आप।
जी
जिया को और हैंड नहीं रेस है तो आप दोस्त पर डाल देते हैं।
जी बहुत शुक्रिया आप सबका। اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهل وتذل بها النفاق وأهل، اللهم انصر أهلنا في غزة العزة وفي جنوب لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي إيران وفي جميع بقعة الأرض، اللهم انصر المظلومين على الظالمين والمستكبرين والطاغوتيين، اللهم انصر المظلومين على الظالمين، اللهم انصر المظلومين على الظالمين وانصرهم بنصرتك وأيدهم بتأييدك يا الله يا الله يا الله يا الله، بقدسك وعلى صفاتك الجلال والجمال وبأنبيائك ورسلك وكتبك ونبي الآخر الزمان والأئمة الطيبون الطاهرون المعصومون المظلومون لا سيما الإمام الحجة يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل هوائجنا وهوائج الجميع المؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات، اللهم ارحم امواتنا لا سيما الشهداء من باراتشينار الى غزه والى جنوب لبنان والى اليمن والى جميع بقعة الارض برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات بر محمد وال محمد، اللهم صل على محمد وال محمد.